ಸಾರ್ಪುತ್ರ ಶಿಲಿ ಸುನತಾಗನ ರೂಪನ ವೇದನ ಸಂಜ್ಞೆ ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ನ ವಿಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷುನ ಸ್ರೋತ ನ ಗ್ರಹಣ ನ ಜೀವನ ಕಾರಣ ಮನೆಯ ರೂಪನ ಸತ್ಯನ ಗಂಧ ನ ಸ್ಪರ್ಶ ಧರ್ಮ ನ ಚತುಶಾಸ್ತ್ರ ಮನೋದಪ್ಪ ವಿನಯ ವಿದ್ಯಾ ನ ಅವಿದ್ಯಾ ಆಚರಣ ಲೇಖರ್ ಜನ್ಮ ಮರಣ ಜರಾ ಮರಣ ತಕ್ ನೈ ಹೇ ಇಸಿ ತರಹ ದುಃಖ ಸಮುದಾಯ ನಿರೋಧದ ಮಾರ್ಗ ನೈ ನ ಜ್ಞಾನ ನ ಪ್ರಾಪ್ತ ನೈ ಸಾರಿಪು ಶಿಲಿ ಭೂ ಸತ್ಲ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಕಾರ್ಯ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಜ್ಞಮತ ಆಶ್ರಿತ ಚಿತ್ತ ರಹಿತ ಹೋಗರ್ ತ್ರಸ್ತ ನೈ ಹೋತೆ ಬೇಪಟಾಸ್ ಕೃತ ಅತೀತ ಹೋಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ತೆ ತೀನೋ ಕಾಲ ಅವಸ್ಥೆ ಸಭಿ ಬುದ್ಧಿ ಗಂಭೀರ ಆಶ್ರಯ ಸೇತ ಸಮಯ ಸಮುದಾಯ ನಿರೋಧ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ತೆ ಮತ್ತು ಜಾನ ಲೇ ಗೇ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪಾರಮಿತ್ರ ಮಂತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರ ನೂತನ ಮಂತ್ರ ಸಂಸಮಂತ್ರ ಸರ್ವ ಸಮಯ ಕಾರ್ಯ ಸತ್ಯ ಜನತ ಯಾ ಪ್ರಜ್ಞಮತ ಕಾಜಾತ ತದ್ಯತ ಓಂ ಗತೆ ಗತೆ ಪಾರ ಗತೆ ಪಾರ ಸಂಗತಿ ಉದಿಸೋ ಬುದ್ಧ ಸತಮಾಸ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಸ್ಕೆ ಪಶ್ಚಾತ್ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ ಸಮಾಸ ಬುದ್ಧ ಸತಮಾಸ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಧುವಾದ ಸಾಧು ಸಾಧು ಕುಲಪತ್ ಎಸಾಯಿ ಜೈಸೆ ತುಂಬ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉಸಿ ತರ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಜ್ಞಾಚರ್ಯ ಕಾಚರಣ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ತೀನೋ ಕಾಲೋಕ್ಕೆ ತಥಾತ್ಮ ಸಂಬೋಧನ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಉಪದೇಶ ದಿಯ ಆಸ್ಮ ಸಾರಪುತ್ರ ಬೋಧಸತ್ವ ಮಹಾಸತ್ವ ಆರ್ಯಭಿಲೋಕಿತ ಸಹಿತ ಸಹಿ ಸಭಿ ಪರಿಸರ ತಥಾ ದೇವತಾ ಮನುಷ್ಯ ಸೂರ್ಯ ಏವಂ ಗಂಧರ್ವ ಸಹಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೋಕನೇ ಅನುಮೋದನ ಕಿಯಾ ಔರ್ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧಗೆ ಉಪದೇಶ ಕಾ ಅಭಿನಂದನ ಕಿಯಾ जो अभिच्छा है वितरत की वो अर्पण करते हुए उसको चढ़ाते हुए श्रावक तथा प्रत्येक बुद्ध जो दुख और समुदाय से शांत निर्माण को चाहते हैं उन्हें नरात्म ज्ञान सर्वकारक ज्ञान द्वारा उपशम ब्रह्मा की उल्ले जाने वाले जगत का कल्याण चाहने वाले बुद्ध सत्व निरात्म से जगत तीनों गोत्रों कल्याण करने वाले तथा आशीष भाव को निरात्म रूप में जानने वाले सर्वक सम्यक बुद्ध सम्यक चित्त युक्त द्वारा मुनि द्वारा तीनों यानों संपूर्ण मार्ग की नाना देशना देने वाले उस श्रावक बुद्ध सत्व तथा बुद्ध की माता प्रज्ञा पर नमस्कार करता हूँ। निरोध रहित उत्पाद रहित उच्छेद रहित अश्वस्त एकात रहित नाना रहित नानार्थ रहित आगमन रहित निर्गम रहित ऐसे आठ विशेषणों वाले प्रति समर्थवा जो समस्त प्रबंधों का उपशम और कल्याण करने वाले हैं ऐसे प्रति समर्थवा देशना करने वाले सम्यक संबुद्ध जो उपदेश कर्ताओं में श्रेष्ठ हैं उनकी वंदना करता हूँ। परम विद्वान हुए हैं सलामरी इत्यादि की रचयिता या अन्य पंडितों को स्तुति की जा रही है।
Oh, Lord. Oh.
धर्म में गणों में श्रेष्ठ अंक ऐसी समय से जब तक मुझे बोधि के प्राप्त नहीं होता तब तक शरण में जाता हूँ। मेरे द्वारा दान आदि दिए गए पुण्य से जगत के हित के लिए बुद्धत्व की प्राप्ति हो। फिर इस बार तीन बार इसका पाठ करें। बुद्ध धर्म में गणों में श्रेष्ठ संघ के इसी समय से जब तक मुझे बुद्धि प्राप्त नहीं हो तब तक मैं शरण जाता हूँ। मेरे द्वारा दान आदि दिए गए पुण्य से जगत के पुण्य से जगत के हित के लिए बुद्धत्व की प्राप्ति हो। पूछ रहे तीन बार हुआ, तीन बार हुआ तो तीन बार इस तरह का। गौतम भगवान गौतम बुद्ध को सबसे पहले स्तुति करते हुए कि जिन्हों गांधी चांगजेठा बिहार ने और चार तरफ के जो और पर्यावरण या रित्याचा आसपास के जितने भी मठ इत्यादि के सहयोग से यहाँ पर प्रवचन पर अनुरोध किया गया तो ये सभी लोगों के की तरफ से प्रयास किया गया। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे जो लामा लोग हुए हैं लिम्बुछ लोग इत्यादि के सहयोग रहा है। तो दो वर्ष पूर्व लमरिम का शुरुआत हुई थी और आज तीसरा वर्ष है। तो आज जो लमरिम श्यामा लमरिम नाम से जाना जाता उसके रचयिता श्यामा उनके उन्होंने उसका उपदेश दिया और उसके खासकर उसमें उसके रचयिता कहे जाते हैं। और लगता हूँ किस प्रकार से हरी और मैंने आमदो लामा जी से इसका प्रवचन दिया। और ठीजा रिम्पोच और उन की तरफ से भी मैंने प्रवचन लिया और केपजे रिम्पोच इत्याद से मैंने प्रवचन लिया। तो इसमें इस ग्रंथ में लगभग 700 के आसपास पेज हैं, तो इन 6 दिनों में ख़त्म हो पाएगा नहीं हो पाएगा कह नहीं सकते हैं। तो अगर इस बार संपन्न नहीं हो पाता तो अगले वर्ष, तो अगले बार पुनः करेंगे और अगले वर्ष जब जब प्रवचन करेंगे तो निश्चित रूप से समाप्त करेंगे। जैसे कि यहाँ पर पिछले 3 वर्षों से जो हमारे 3 मठ हैं गांधी ड्रेपोंग और शेरा से आए हुए भिक्षु लोग और उसके अतिरिक्त टाशी लुम्पो से आए हुए भिक्षु और जय उदाहरण के रूप में अगर बेला कॉपी को देखें नमडोलिंग तो ये लोग ये जो सेडा हैं या विश्वविद्यालय काफ़ी बड़े हैं। जहाँ तक 3 मठों की बात की जाए वो तिब्बत से ही इस परंपरा रही है, तो लगभग 500-600 वर्ष बीत चुके हैं। तो इस प्रकार जो मठ या परंपरा रही है काफ़ी बड़े रहे हैं और उसके अतिरिक्त टाशी लुम्पो और उसके अतिरिक्त हिमालय परंपरा के लोग पधारे हैं और पेनो रिम्पोचे का उदाहरण देखें, माफ करना है इनके परंपरा जी की आवाज़ ठीक से नहीं आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार से जो 3 विश्वविद्यालय तिब्बत में थे भारत में भी उनकी स्थापना की गई और यहाँ पर भी जिस प्रकार से तिब्बत में पढ़ाई पठन पाठन करते थे उसी प्रकार से यहाँ करते हैं और भगवान बुद्ध के शासन को बढ़ाने के लिए यहाँ भी उसी प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। तो अभी शास्त्र और शास्त्र की लगभग 300 के आसपास ग्रंथ हैं जो तो जहाँ जाके माध्यमिक दर्शन के जो 6 पोथी हैं और ये एक प्रमुख रूप से माने जाते हैं और उसके अतिरिक्त अगर उनके अतिरिक्त अगर ठीक से पाठन करेंगे तो अपने दिल में एक परिवर्तन करना चाहिए। और जहाँ तक जो सूत्र की लगभग 300 से ज़्यादा पोथी हैं तो उनको पढ़ना चाहिए। अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो उसका तो उसको अर्थ समझ सकते हैं। उसके अतिरिक्त उन्हें उसके अतिरिक्त अगर उस और उसे अतिरिक्त अगर आप किस प्रकार देवता का इत्यादि का ध्यान लगाएं तो और अगर पढ़ाई पठन पाठन ना करें तो एक तरह हिंदू का धर्म उस तरह से हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर पढ़ाई करते हैं और बहुत अच्छी बात है कि वास्तव भगवान बुद्ध का दर्शन है और उस हिसाब से आप पढ़ रहे हैं पठन पाठन कर रहे हैं। तो मैं भी मानता हूँ कि जो बहुत लमरम छेम्बो का उपदेश दे रहा हूँ और मुझे ने प्राप्त किया है, कभी अपने भाग्यवान मानता हूँ। तो केवल प्राप्त कर लेना, तो लमरम जो लमरम छेम्बो में तीनों जो सिद्धांत हैं, तीन ज्ञान हैं उनके सभी के वहाँ पर सिद्धांत दिए गए हैं, उनको पढ़ना चाहिए। उसके अतिरिक्त जो अतिरिक्त लमरिम जो भाग अलग अलग हैं उनको पढ़ना चाहिए, लेकिन लमरिम छेम्बो जो महामार्ग क्रम है उसको वो तो एक तरह के आधार के रूप में है। उसके अतिरिक्त तो अलग अलग विद्वानों के द्वारा जो लमरिम रचना कही है जिनके ग्रंथों की संख्या 1 से 5 तक है तो उनमें तो व्याख्या की गई है, लेकिन विस्तार से नहीं है। तो इसलिए आपको प्रयास करना चाहिए कि जो लमरिम छेम्बो है उसको ठीक से अध्ययन करें, उसका पढ़ाई ठीक से करना चाहिए। अगर आप लमरिम छेम्बो को ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो बाकी के जो लमरिम हैं उनको समझ पाना ठीक से नहीं समझ सकते। इसलिए मैं कहता हूँ कि तो अध्ययन करना बहुत जरूरी है। हम लोग, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोग 21वीं शताब्दी में आ गए हैं। 21 और भौतिक चीज़ों के जो विकास है काफ़ी हुआ है, और अपने जीवन को चलाने के लिए विज्ञान की तरफ से बहुत सारा विकास है, और वैज्ञानिक लोग भी प्रमुख रूप से उसका जो वास्तविक चीज़ है जो सत्य है उसको मानते हैं, ऐसे ही वो स्वीकार नहीं कर लेते हैं। उसी प्रकार से हम लोग भी हम लोग अगर तिब्बतियों की बात करें तो काफ़ी लंबे समय तक फिर आवाज़ यहाँ पर नहीं आ रही है। तो तिब्बती लोगों ने जिन ग्रंथों की रचना की है उनको भी अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, उनको जानना चाहिए। और भारतीय विद्वानों की रचना को दिया गया तो उसमें 3 प्रकार की व्यवस्था कही है, दूसरे लोगों को रोकना, अपनी बात को रखना, और जो तीर्थांकर इत्यादि हुए हैं उनके जो गलत सिद्धांत उनको रख करके अपने सिद्धांत को सिद्ध करना। माफ करना, फिर से परम पावन जी की आवाज में बाधा हो रही है, यहाँ पर नहीं आ रहे। कभी होंगे तो अतिशा के अगर ग्रंथों में कुछ देखा जाए तो उसमें जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसमें जो प्रमाण की बात कही गई है तो उसको खासकर जो अबोध है उनके सिद्धांतों को रोकने के लिए कहा गया है, और भाव जो भाव विवेक द्वारा रचित तर्क ज्वाला उसको भी काफ़ी पठन पाठन किया जाता है। और जहाँ तक भारतीय बौद्ध ग्रंथों की बात की जाए वो हर बात को सिद्ध करती है, जैसे कि बोधचर्य अवतार की बात अगर की जाए तो वो अभ्यास के लिए अगर बात की जाए तो बोधचर्य अवतार के अतिरिक्त कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जो कि अभ्यास के लिए प्रमुख हो। तो दूसरे ग्रंथ हैं, लेकिन जहाँ तक निश्चित करने वाली बात हो तो भारतीय जो ग्रंथ हैं उसके अतिरिक्त दूसरे को नहीं मिलती हैं। तो तिब्बती ग्रंथों में उस तरह की रचना नहीं है, उस तरह की गहराई नहीं है जिस प्रकार के भारतीय ग्रंथों में गहराई है। जैसा हम मैं कहता हूँ, हम लोग तिब्बती लोगों का जो रहन सहन है तो छोटे छोटे पर्यावरण में रहते हैं, तो जितना ज़्यादा हम लोग खुशी हैं, प्रसन्न हैं, तो उसके बाद हम लोग बाहर गए जब अपने देश को दिक्कत हुई और हम लोग यहाँ पर शरणार्थी के रूप में आए हैं, तो हम लोग दूसरे देशों में रह रहे हैं। अगर दूसरी तरफ से देखें तो ये बहुत ही दुख की बात है, अपना देश नहीं है, अपना देश छोड़ चुके हैं क्योंकि बहुत सारी समस्याएँ इत्यादि हैं। अगर दूसरी तरफ से देखें, अगर मैं अपना खुद का उधार दूं, तो जैसे पहले के एक छोटे से जगह पर रहते थे, एक छोटे से ग्रह में रहते, तिब्बत या छोटी जगह पर रहते थे, उसके बाद बाहर आने से चाहे पूर्वी दुनिया हो, पश्चिमी दुनिया हो, सबको देख सकता हूँ। और तो फिर बाहर आने के बाद भगवान बुद्ध के ग्रंथों में अनित्य और शून्यता इत्यादि के बारे में कही गई है, उनको अच्छी तरह से समझ सकते हैं और समझ पा रहे हैं। और आजकल हम लोग 21वीं शताब्दी में हैं, पहले जैसे तिब्बतियों के अपने बात की जाए, वैद्य एक छोटे से स्थान पर रहते थे, उसके बाद हम लोग 21वीं शताब्दी में आकर के एक बड़े से दुनिया में या बड़ी दुनिया देखने का मौका मिला। और बाहर के जितने भी चीज़ें हैं जिन उनको हम लोगों को जानने का मौका मिला, और भगवान बुद्ध के जो मार्ग और क्रम और फल हैं उनको किस प्रकार से हैं, उनका मतलब क्या है, उनके उनमें आपस में अंतर क्या है, और उनको अच्छी तरह से जानते हैं तो अगर भगवान बुद्ध को धर्म को जान करके श्रद्धा रखते हैं या विश्वास करते हैं तो ये विश्वास या श्रद्धा अच्छी होगी। जैसे डेलवा दोनसल में कहा गया कि जो जो जिनकी बुद्धि प्रखर नहीं होती है वो विश्वास करके चलते हैं, जिनकी बुद्धि प्रखर होती है वो अपने बुद्धि के अनुसार चलते हैं, तर्क वितर्क के अनुसार चलते हैं। तो ये यहाँ तक ये स्पष्ट है कि जहाँ तक भगवान बुद्ध के दर्शन की बात है, वो जो जिनकी बुद्धि प्रखर है उनके लिए कहा गया था, कुशाग्र लोगों के लिए प्रवचन कहा गया था। तो हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि और हम लोगों को धर्म की अगर अभ्यास करें तो प्रखर बुद्धि वाले लोगों की तरह या उनके पृथक जनों के अनुसार अभ्यास करना चाहिए। और जो बिल्कुल नहीं जानता है, बिल्कुल जिसकी बुद्धि प्रखर नहीं है, तो वो केवल उस पर विश्वास करता है, ज़्यादा अभ्यास नहीं कर सकता। और इस तरह से मानना चाहिए, जब दूसरे को पढ़ाएं तब भी सोचना चाहिए कि मैं जो प्रखर बुद्धि वाले हैं उनको पढ़ा रहा हूं, ऐसा मानना चाहिए। तो भगवान बुद्ध के जो एक परिचय का एक भाग होता है, परिचय होने के बाद उसके बाद उस किस प्रकार से अभ्यास करना चाहिए, इसको दो भागों में बांटता हूँ। मैं हमेशा भगवान बुद्ध के दर्शन को मैं परिचय देता हूँ, जैसे पिछले यहाँ भिक्षु लोग आए हैं तो पिछली बार भी लोगों ने सुना हुआ होगा और तो उनको तो जानकारी होगी और उनके लिए एक तरह की पुनरावृत्ति होगी। उसके अतिरिक्त बहुत सारे लोग आए हैं, अलग अलग देशों से आए हैं, नए लोग आए हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जहाँ पर भगवान बुद्ध का दर्शन नहीं है, वहाँ से भी कुछ लोग पधारे हैं। तो उनके लिए भगवान बुद्ध का दर्शन किस प्रकार से है, तो बुद्ध धर्म का परिचय उसको संक्षेप में बताऊंगा, इस प्रकार का मैं सोचता हूँ या इस प्रकार की मेरी इच्छा जागृत हुई। आप लोग तो जानते होंगे, जैसे तो आप ऐसे मत सोचिए कि आप लोग ऐसा सोचें कि मेरे लिए बार बार वही बात कह रहे हैं, ऐसा मत सोचिए। तो ये बात खासकर उनके लिए है जो पहली बार लोग आए हैं उनके लिए है। भगवान बुद्ध ने खुद कहा है कि हे भगवान, हे मेरे भिक्षु और विद्वान लोग भगवान मेरे द्वारा, तो ये ग्रंथ में कहा गया है कि हे मेरे भिक्षु और विद्वानों को, मेरे धर्म को आप जांच पड़ताल कर करके जानिए। और ये केवल अभ्यास करने के लिए है, ना कि उसको केवल मानने के लिए। ऐसा कोई शास्त्र नहीं जिसने कहा हो कि आप परीक्षण करिए। तो ज़्यादातर लोग ऐसा ही कहते हैं कि मेरे अगर वचन को, मेरी बात को अगर आप ध्यान नहीं करते हो, श्रद्धा नहीं करते हो, तो आप नरक में जाओगे। अगर श्रद्धा करोगे तो देवलोक में पैदा हो गए, ज़्यादातर लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा क्या कि हे भिक्षु और विद्वान लोग, उन्होंने कहा कि हे मेरे शिष्यों मेरे दर्शन को आप विश्वास करके, श्रद्धा करके नहीं मानने की जरूरत नहीं है। मैंने जो भी कहा उसको परीक्षण करिए। जैसे एक सुनार सोने को जला करके, तपा करके और रगड़ करके देखता है, उसी प्रकार से भगवान बुद्ध के दर्शन को भी आप लोग परीक्षण करना चाहिए। के परीक्षण के दौरान आपके बुद्धि के अनुसार ये रुकावट पैदा करता कि नहीं, या उस पर ठीक से बैठता कि नहीं, उसके मानना चाहिए। पहले उसके बारे में जांच पड़ताल करना चाहिए, और अगर जांच पड़ताल करके लाभ अगर मिलता है तब उसका पालन करना चाहिए। अगर लाभ नहीं मिलता तो उसको नहीं मानना चाहिए, ऐसा भगवान बुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा है। तो भगवान बुद्ध ने जब ऐसा कहा तो उसके अतिरिक्त नागार्जुन ने और उनके शिष्यों ने कहा कि भगवान बुद्ध ने जैसा कहा उस तरह से माना जा सकता है कि नहीं। और भगवान बुद्ध के अगर जैसा कहा तो कुछ अलग अलग भागों में बांटा, कुछ ग्रंथों को अलग रखा कि जिनको अगर भगवान बुद्ध के अनुसार मान लें तो हमारे बुद्धि पर खरा नहीं उतरता, अगर उनको अलग अलग भाग में बांटा गया। तो अगर हमारे बुद्धि पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डालते, अगर उसको मानने में कोई बुराई नहीं तो उसको मानना चाहिए। अगर हमारे ज्ञान पर प्रभाव डालता है तो उसको परीक्षण करना चाहिए। तो उसके साथ जो शाब्दिक अर्थ और सत्य अर्थ के रूप में दो अर्थों में विभेद किया है, और इस प्रकार की व्याख्या भगवान बुद्ध के धर्म के अतिरिक्त दूसरे धर्मों में देखने को नहीं मिलती है। तो आज के दुनिया में अगर देखा जाए तो लगभग 7 अरब के आसपास आबादी है, और 1 अरब के आसपास ऐसे लोग हैं जो वो धर्म में अभ्यास नहीं करते हैं, किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। और धर्म का जो पालन करते हैं, जो 6 अरब के आसपास लोग हैं, उसमें जो धर्म के साधक लोग हैं, और उसमें बहुत सारे लोग हैं जो धर्म अनुयायी मानते हैं और अपने जीवन को चलाने के लिए, खाने पीने के लिए या पैसे खर्च से अभ्यास करते हैं। तो जर्मनी में उनके गुरु को निकाल दिया, क्योंकि उसका निकालने का कारण ये था कि वो अपने घर में जहाँ वो रहते थे वहाँ पर बहुत सारी व्यवस्था किए हैं, पैसे इत्यादि या फिर रहन सहन राजशाही तरह से रहते थे। तो ये भी समाचार पत्र इत्यादि देखना गया। तो उसमें कहा जाता है, क्रिश्चियन धर्म में ऐसा कहा जाता है कि उसमें बहुत ज़्यादा आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसा देखने को मिलता है। तो क्रिश्चियन मंदिरों में आप देखें, ईसाई जो गिरजाघर है उनमें जाकर के आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उनमें व्यवस्था दी गई है, कि जो वहाँ के भिक्षु लोग हैं या फिर यहाँ भिक्षु लोग हैं, तो वो काफ़ी अच्छी तरह से अभ्यास करते हैं, बहुत ज़्यादा आसक्ति नहीं रखते हैं। जहाँ उनका घर होता है, जहाँ निवास होता है, वो बहुत सामान्य होता है। फ्रांस की एक दक्षिण की बात है, तो वहाँ पर एक मैं गिरजाघर में गया, वहाँ सभी लोगों को नहीं भेजता, तो उन्होंने मुझे बुलाया। तो वो उनका बिहार था, गिरजाघर था, तो वहाँ के जो पादरी थे, तो उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त जहाँ इस बुद्ध विहार में, जो माफ़ करना गिरजाघर में रहते हैं, उसी में रहते हैं। जब मृत्यु हो जाती है तो उनकी शरीर या फिर मृत्यु होने के बाद वहीं दफन किया जाता है। तो उन्होंने जो के भिक्षु थे उन्होंने उन्हें बुलाया, तो मैंने देखा कि वो जूता नहीं पहने थे, वो कप तो उन्होंने कहा कि पैर में चप्पल नहीं पहने हैं क्या, चप्पल अत्याय नहीं पहनते हैं क्या। तो इससे स्पष्ट होता है कि कितने सादी सादे तरीके से रहते हैं, सल्ली से रहते हैं। तो अगर लोगों को तो हम कहते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा श्रद्धा वो ज़्यादा धन इत्याद नहीं उतारना चाहिए, उसके तरह रूम में अगर 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 इत्याद गलत काम करते हैं तो उन्हें निकाल देना चाहिए। तो यहाँ पर बैठे हैं खेम्बो बैठे हैं और बड़े बड़े भिक्षु लोग बैठे हैं, अगर आप लोग कोई गलत करते हैं, अगर अपने रूम में या अपने धन की ज़्यादा संचय करते हैं तो आपको भी निकाल देना चाहिए, ऐसा परम पावन जी कह रहे हैं। तो ये ध्यान सावधानी बताना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों को नुकसान पहुंचाता है, भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए हानिकारक है। अगर आप गलत काम करते हैं तो उनसे जो व्यवस्थापक उनसे कहना चाहिए कि बहुत बहुत धन्यवाद, अभी तक आपने अच्छा किया, तो अब आप यहाँ से निकलिए। कोई उनको कोई डांटना फटकारना या पीटने की जरूरत नहीं है, उन्हें निकाल देना चाहिए। तो ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप ठीक से नहीं जानते हो तो जो क्रिश्चियन लोग किस प्रकार से बिहार में रहते हैं, किस प्रकार से उनका आचरण होता है, उनको भी आपको जानना चाहिए। तो भगवान बुद्ध के दर्शन को जानना चाहिए, सीखना चाहिए और फिर उसके बाद उसका अभ्यास करना चाहिए। और 1 अरब के आसपास जो है नास्तिक हैं, किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, और लगभग 6 अरब के आसपास ऐसे लोग हैं जो धर्म को मानते हैं, और जो धर्म और जो जो 6 अरब के आसपास हैं उसमें धर्म का अभ्यास करने वाले काफी लोग ऐसे हैं जो काफी बुरा कर्म करते हैं। तो ये बहुत बेकार बात है। श्रद्धा भगवान में भगवान बुद्ध का श्रद्धा रखते हैं, अभ्यास करते हैं, लेकिन फिर भी ये बुरी काम करते हैं, इसका मतलब वो कोई भी धर्म के वाले हैं तो वो ठीक नहीं हो रहा है। धर्म जहाँ तक प्रेम करुणा स्नेह या फिर संतुष्टि इत्यादि दिल से होना चाहिए। अगर दिल से आप इस प्रकार से करेंगे तो कोई आपका विरोध नहीं करेंगे। केवल आप मुख से बोलते रहेंगे, केवल शब्द मात्र करेंगे, बाड़ी से बोलेंगे और अभ्यास नहीं करेंगे तो शायद वो बुरा कर्म होता है, इस तरह नहीं करना चाहिए। आजकल के इस दुनिया में 7 अरब के आसपास जो जनसंख्या है उनके लिए अच्छे व्यवहार के लिए दयालु बनाने के लिए और उसके लिए लोगों को अच्छा दिल बनना चाहिए, अच्छे उनको शिक्षा देना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षाओं की कमी है। जैसा कि बच्चे का उदाहरण देखिए, बच्चे जब छोटा होता है तो बच्चे में माँ का प्यार बहुत ज़्यादा होता है, जो भी उनकी देखभाल करता है उसके अंदर बहुत सारा प्रेम होता है, बहुत सारा उसने स्नेह होता है और उसकी स्वतः उत्पन्न होता है। और इस प्रकार का जो प्रेम है, इस प्रकार का जो करुणा है, तो ये स्वतः रूप से माता से प्राप्त होती है, माता के दिल से प्राप्त होती है, क्योंकि हम लोगों में स्वतः से प्रेम होता है। तो ये स्वतः का प्रेम माँ से प्राप्त होता है। और दूसरा जो मनुष्य का समाज होता है उसमें हम लोग अकेले नहीं रह सकते हैं, हम एक दूसरे पर निर्भर होकर के रहते हैं। और इस प्रकार से हम सभी के साथ साथ एक मिलकर के प्रेम दिखाना चाहिए। और हमारे जो गुस्सा है, गुस्सा हमारे समाज को बिखेरता है, और जो प्रेम है समाज को जोड़ता है, क्योंकि जो जहाँ तक समाज को जोड़ने का काम करता है वो प्रेम और स्नेह ही होता है। और जहाँ तक मनुष्य के जो मूलभूत आवश्यकता वो प्रेम का होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए। मेरे कुछ वैज्ञानिक लोग हैं जिन्होंने परीक्षण किया के 2-3 साल के बच्चों के ऊपर परीक्षण किया। जो लोग बातचीत नहीं करते, जो बच्चे बातचीत नहीं करते हैं उनके ऊपर परीक्षण किया, तो उनको ऐसे कला बना करके दिखाया, और उस कला में और उसमें छोटे छोटे बच्चों के एक छोटे छोटे बच्चों को मदद करने के चित्र बनाया गया था। और इस जब 2-3 साल के बच्चों को दिखाया गया तो बच्चे स्वतः से इस प्रकार के चित्र को देख करके प्रसन्नित हो रहे थे, खुशी महसूस कर रहे हैं। और दूसरे प्रकार के चित्र ऐसा बनाया गया था जहाँ पर लड़ाई झगड़े वाले फोटो बनाए गए, तो उनको जैसे ही बच्चे देख रहे थे तो एकदम बच्चे उसमें घृणा या दुख महसूस कर रहे, डर महसूस कर रहे थे। तो मैंने भी देखा, मैं भी उस कार्यशाला में गया, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ तक के बच्चे भी हैं या मनुष्य की जो आदत होती है वो प्रेम को चाहते हैं, तो अमलों की बुराई क्या है। या फिर दिक्कत यहाँ होती जब छोटे होते हैं तो उस समय हम लोग प्रेम अच्छी तरह से नहीं दे पाते हैं, और फिर धीरे धीरे जब बढ़ते जाते हैं, जब बड़े हो जाते हैं, और फिर उस समय जब शिक्षा देते हैं तो ज़्यादातर शिक्षा की बात की जाए तो वहाँ पर भौतिक विकास किस प्रकार से हो सके, हमारी तरक्की कैसे कर सकें, इसके बारे में शिक्षा दी जाती है। और कभी भी ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती है कि हम किस प्रकार से अपने मन में परिवर्तन कर सकें, इस प्रकार की शिक्षा नहीं जाती। अगर मन में परिवर्तन की अगर बात की जाए तो तुरंत ऐसा सोचते हैं कि धर्म की बातें हैं, और ज़्यादातर ऐसा मानते हैं, ज़्यादातर भगवान जो भी धर्म है तो उनको या तो ईश्वर ने बनाया है या फिर लामा इत्यादि ने दिया है, ऐसा मानते हैं। तो इसको कोई अपनी बुद्धि से सोचा नहीं जा सकता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धर्म को नहीं मानते हैं, तो जो धर्म को मानने वाले हों या ना हों, तो सभी लोगों को लिए प्रेम और करुणा की आवश्यकता होती है। अगर प्रेम हो तो परिवार में सुख होता है, समाज में सुख होता है, और देश में सुखी आती है। ऐसा भी नहीं हो सकता, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रेम का और स्नेह का अगर हम अभ्यास करेंगे तो दूसरे को फायदा होगा, हमको फायदा नहीं होगा। तो इस प्रकार की अगर सोच करेंगे तो ये गलत सोच है। तो अगर हम करुणा और प्रेम का अभ्यास करेंगे तो अपने शरीर के लिए फायदा होता है। इस प्रकार की बातें वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कि अगर हम अपने चित्त में बार बार गुस्सा करते हैं, क्रोधित होते हैं, तो हमारे शरीर के जो भौतिक जो तत्व हैं उनमें परिवर्तन होता है। जैसे रक्तचाप है उसमें परिवर्तन होता है, वो बढ़ जाता है, दिल में दर्द उत्पन्न होता है, भय उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार के जो बातें हैं, तो 10 साल के आसपास हो चुके हैं, तो वहाँ पर कुछ वैज्ञानिक लोगों ने इसका एक परीक्षण किया कि 1-2 हफ्ते तक कि लोगों से कहा कि प्रेम करने का अभ्यास करिए, और उसके बाद उससे क्या फ़ायदा होता है, उससे क्या लाभ होता है। ये केवल धर्म की बात के लिए नहीं कह रहे हैं कि ये हमारे शरीर के लिए किस प्रकार से लाभदायक हैं, और उसका अलग आधा घंटा अभ्यास करने के लिए उनको दिया, और 2-3 हफ्ते तक एक परीक्षण किया। तो जब परीक्षण करने से पूर्व परीक्षण करने से पूर्व उनका ब्लड प्रेशर किस प्रकार से था, और 2-3 हफ्ते के बाद उनका ब्लड प्रेशर किस प्रकार से है, इसको जांच किया गया। और जब करुणा मैत्री का प्रेम का अभ्यास किया गया तो किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, तब जांच में पाया जाया गया कि उनका जो ब्लड प्रेशर था वो भी कम हुआ, जो दिल में डर या भय होता था वो भी कम हुआ, और उनके मन में भी तसल्ली आई। तो और बाकी जितने लोग अभ्यास कर रहे थे वो काफ़ी प्रसन्न हुए, और जो साथी लोग थे उनके साथ साथ प्रेम और मैत्री के साथ रह रहे थे। तो इस प्रकार की जो बातें हैं अभ्यास करने से देखने को मिली हैं। अब लगभग 10 साल के आसपास हो चुके हैं। आजकल की जो आधुनिक जो शिक्षा है उसमें प्रेम और करुणा का जो फायदा है और गुस्से या घृणा की क्या हानि है उनके बारे में, और ये बातें हैं, मैं धर्म की बातें नहीं कर रहा हूँ, कर्म फल की बातें नहीं कर रहा हूँ, पूर्व जन्म या परजन्म की बातें नहीं कर रहा हूँ, इस प्रकार की बातें कर रहा हूँ जिससे अगर प्रेम होगा तो किस प्रकार से लाभ है, प्रेम न होने से हानि क्या है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें जो है बिल्कुल मूलभूत बातें हैं। तो अगर धर्म के साथ के जुड़ कर अगर बातें करेंगे तो थोड़ा बहुत बाधा उत्पन्न हो सकती है, लेकिन अगर धर्म के साथ न जोड़ कर समाज के हित के लिए अगर बातें करें तो सबके लिए सार्वभौमिक हैं, सबके हित के लिए हैं। तो आज के विद्यालयों में भी या स्कूलों में भी जो शिक्षा देने की प्रणाली है, तो दूसरे महीने में फरवरी में कुछ इस प्रकार के कोर्कुलम बनाने का या कोर्कुलम बना करके बाहर आने का प्रयास है। तो दुनिया में लगभग 7 अरब के आसपास लोग हैं, उन सब के लिए किस प्रकार से हित हो सके ऐसा प्रयास कर रहे हैं। तो समाज में किस प्रकार से शांति आ सके, अशांति के लिए अगर हम प्रार्थना करें, पूजा करें, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, चाहे बौद्ध, कोई भी शांति के लिए पूजा करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं फायदा होता है। हम लोग भी तिब्बत लोग अभ्यास इतना पूजा पाठ करते रहे, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। भगवान बुद्ध के दर्शन के अनुसार कहा जाए कि आप कर्म को अच्छा करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, बुरे कर्म को छोड़ना चाहिए, तभी तो अगर हम लोग, मैं मजाक में ऐसा कहता हूँ, बहुत लोग कहते हैं हे भगवान आप ही जानते हैं, आपके हाथ में है, ऐसा मान अगर ऐसा कहता रहें, अगर हम जो कर्ता के रूप में ईश्वर के रूप में उनको मानते रहें, तो भगवान बुद्ध शायद आपसे यही कहेंगे मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, जैसे कि मैं अपने हाथ से आपके दुख को हटा नहीं सकता हूँ, पानी से नहीं धुल सकता हूँ, या मेरा जो दिमाग है या बुद्धि आपके अंदर नहीं डाल सकता हूँ, माफ़ करना ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर भगवान बुद्ध ऐसा कहते हैं तो क्या करेंगे, क्योंकि जितने भी हमारी जो समस्याएं हैं मनुष्य ने ही बनाए, कोई भगवान ने या देवता ने नहीं बनाई, जो समस्या सारी हम ही लोगों ने बनाई है। तो भगवान जो भी हैं वो प्रेम के अतिरिक्त, प्रेम या करुणा के अतिरिक्त कुछ नहीं करते हैं, वो झगड़ा या इत्यादि नहीं सिखाते हैं। जी सारी जो बुराई है हम लोगों ने उत्पन्न की है, अगर मान ली ईसा मसीह से पूछा जाए कि इस दुनिया में शांति स्थापित कर दीजिए, तो शायद वो भी कहेंगे कि आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने बुराई पैदा की है, झगड़े उत्पन्न किए हैं, तो इसका समाधान आप लोग ही कर सकते हैं, तो शायद वो भी ऐसा ही कहें। तो अगर लोगों में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उनमें शिक्षा दे करके कि प्रेम करना के फायदा क्या है, अगर प्रेम करना का अभ्यास नहीं करेंगे उससे हानि क्या होती है, तो इस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है। तो इस प्रकार का हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा संभव हो सके। तो इस प्रकार का अभ्यास करने वाले लोग जो हैं, या फिर इसका सहयोग देने वाले लोग, वैज्ञानिक लोग इत्यादि इसका सहयोग कर सकते हैं, तो इसके अतिरिक्त जो धार्मिक लोग हैं वो लोग इतना ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ धार्मिक लोग हैं वो ऐसे बातें समझ सकते हैं। ये जो बातें हैं वो वास्तविक हैं, कोई बनावटी बातें नहीं हैं, क्योंकि इस दुनिया में 7 अरब के आसपास लोग हैं, ये बातें सभी लोगों के लिए ये लाभदायक हो सकते हैं, और सभी लोगों के एक बात होना चाहिए, एक बात होती है, तो वो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किस प्रकार की जो हमारे प्रेम और करुणा है वो कैसे फैल सकती है, और करुणा और प्रेम लोगों में पूजा पाठ के द्वारा नहीं फैल सकती है, ये वास्तविक शिक्षा के द्वारा दिया जा सकता है। तो ये सारे लोग हैं 7 अरब के आसपास जो जनसंख्या, उन सब के हित के लिए होने चाहिए। जो आज के युग में नई शिक्षा प्रणाली है उसमें प्राथमिक विद्यालयों से लेकर स्कूलों से लेकर के नर्सरी से लेकर के और विद्यालय तक, विश्वविद्यालय तक उस पाठ्यक्रम को रखना चाहिए। अगर इस प्रकार के हम बातों को देखें, इन चीज़ों को देखेंगे, तो हमारे जो 300 से आसपास सूत्र और शास्त्र हैं, तो उसमें जो मनोविज्ञान है अलग से पढ़ाने की बात इन्हीं बातों को लेकर के देखी गई है। जहाँ तक बौद्ध धर्म की बात, जो बौद्ध धर्म को नहीं मानने वाले लोग हैं वो बौद्ध धर्म के ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे, और जो बौद्ध धर्म को नहीं मानते, जो किसी भी धर्म को मानते हैं तो वो भी नहीं पढ़ेंगे, तो भी आपके बौद्ध धर्म के, तो अभी आपकी जो पोथी हैं उनको नहीं मानेंगे। तो अगर उनमें से हटा करके मनोविज्ञान की बात को अलग रखें तो शायद ये दुनिया के सभी लोगों के लिए फ़ायदा हो सकता है, चाहे वो धर्म को माने या ना माने, क्योंकि उसमें किस प्रकार से हमारे प्रेम और करुणा को बढ़ाया जा सकता है उसकी चर्चा की जाती है। तो हमको सबसे पहले जो मनोविज्ञान है, बौद्ध मनोविज्ञान है, उनको जानना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, और उसके बाद चित्त और चेतस का सिद्धांत किस प्रकार है और उसको हम दूढ़ा पढ़ते समय जानते हैं, और जो कार हेतु और प्रत्यय या फल या कार किस प्रकार से, या फिर संबंध के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो ये संबंध के बारे में बात है, कर्म फल की बात है, ये कोई धर्म की बात नहीं है, तो ये शिक्षा की बात है, ये कोई धर्म की बात नहीं है। और जो सूत्र शास्त्र जो 300 आसपास हैं, हम लोग बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं अपने बौद्ध विहारों में रखते हैं, तो इस प्रकार के ग्रंथों में किससे लोगों को फ़ायदा हो सकता है उनको निकालना चाहिए, विहारों से निकालना चाहिए। तो इस प्रकार के ग्रंथ में वैज्ञानिक लोग भी उसको मान सकें कि हाँ ये जैसा हम कहते हैं वैसा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर बहुत सारे विद्वान लोग, गैसे लोग, और आप लोगों ने लद्दाख में उस पुस्तक का विमोचन किया गया, और जो विशाल रूप से वहाँ पर उसका विमोचन हुआ, और उसके बाद जो द्वितीय पुस्तक है वो यहाँ पर उसका विमोचन होगा, उसमें किस प्रकार के बौद्ध धर्म और जो, और जहाँ तक आधुनिक शिक्षा की बात है, लाभदायक हो सके उसके बारे में ये पुस्तक बनाई गई है। तो हम लोगों को ये वास्तव में सोचना चाहिए कि आधुनिक युग में किस प्रकार की आवश्यकता है। अपने अगर चित्त को अगर ठीक करना चाहते हैं तो पूजा पाठ से संभव नहीं हो सकता है। तो अगर पूजा पाठ से संभव हो सकता है तो अभी तक हम लोग पूजा पाठ करते हैं उससे तो कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए पठन पाठन करने से जानना चाहिए कि अगर हम अपने चित्त को बस में नहीं करते उससे हानि क्या हो सकती है, और चित्त को प्रशिक्षित करते हैं उससे लाभ क्या होता है, इनको जानना चाहिए। आजकल अगर देखा जाए तो शिक्षा जो है दुनिया के लिए एक उधार बन गई है, शिक्षा सभी के लिए आवश्यक है। अगर उसमें भी अगर आप अपनी शिक्षा प्रणाली को ठीक से कर सकें तो बहुत लाभदायक हो सकता है। तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि मैं बहुत प्रसिद्ध हो जाऊँगा, बहुत मेरा नाम हो जाएगा या प्रसिद्धि प्राप्त कर लूँगा, इसके लिए मैं नहीं करता हूँ। मैं भी ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि सारे के सारे सत्य लोग हैं, जीव लोग हैं, वो दुखों से मुक्त हों, सुख हो, मिल जाए। मैं भी ये पाठ करता हूँ, मैं भी पूजा करता हूँ, लेकिन इसमें इस दुनिया में जो 7 अरब के आसपास लोग हैं उनके साथ में हमारा संबंध है। अगर बाकी के लोग जो 7 अरब के आसपास लोग हैं उन सब में शांति प्राप्ति हो जाए तो बाकी के जीव जंतु जिया कीड़े मकोड़े कुत्ता बिल्ली सब लोगों में तसल्ली मिलेगी, शांति होगी। तो जितना हम कर सकते हैं, जितना हमसे संभव हो सकता है उसको करना चाहिए। और इस प्रकार के कार्यों को देखते हुए मैं हमेशा यही देखता हूँ कि इस दुनिया में 7 अरब के आसपास लोग हैं, उनमें से मैं एक हूँ, और उसके अतिरिक्त मैं अपने आप को हटकर नहीं देखता हूँ। मैं कभी नहीं ऐसा सोचता हूँ मैं दलाई लामा हूँ, जब भी मैं लोगों से मिलता हूँ, और मैं हमेशा सोचता हूँ कि एक भगवान बुद्ध का मैं शिष्य हूँ और एक बौद्ध भिक्षु हूँ, मैं हमेशा यही मानता हूँ, यही सोचता हूँ। और सभी लोगों का किस प्रकार से हित हो सके उनके बारे में सोचना चाहिए। जो बोध चित्त का अभ्यास करते हैं तो केवल पूजा पाठ या प्रार्थना करने से कुछ नहीं हो सकता है। तो बुद्ध धर्म भगवान बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका मार्ग या फिर जो व्यवस्था उसका अभ्यास करना चाहिए। जो बुद्धत्व को प्राप्त किया जा सकता है उसके तरीके हैं, उनका अभ्यास करना चाहिए। तो धर्म को मानने वाले लोग बहुत सारे धर्म को मानने वाले हैं, लगभग 10-15 के आसपास लोग जैसे धर्म को मानने वाले अलग अलग हैं। तो उसमें एक प्रकार के धर्म हैं जो ईश्वर को मानते हैं, और कुछ प्रकार धर्म जो ईश्वर को नहीं मानते हैं वो अलग धर्म हैं। तो ईश्वर को मानने वाले और न मानने वाले दो प्रकार के होते हैं। और जो ईश्वर को नहीं मानते उसमें जैन और सांख्य और बौद्ध, तो तीन लोग हैं जो कि बौद्ध धर्म को, जो कि ईश्वर को नहीं मानते हैं। और बाकी इसके अतिरिक्त के जितने भी धर्म हैं, बाकी के जितने भी धर्म, तो एक पारसी व्यक्ति से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि 3000 वर्ष पूर्व जो सांख्य सिद्धांत का यहाँ पर शुरुआत हुआ, और ईरान में उसी समय ईरान में सूफी जो सिद्धांत या बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं जोरोज़्रिम, वहाँ पर भी उसकी शुरुआत हुई। 3000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई। फिर उसके बाद जू, फिर उसके बाद ईसाई, मुसलमान धर्म और अलग अलग धर्म पैदा हुए या उसके। तो अगर धर्म समय की बात की जाए तो 3000 वर्ष पूर्व भारत में सांख्यवादी का शुरुआत हुआ, और अरब में उसी 3000 वर्ष पूर्व सूफी या जोरोज़्रिम नाम के धर्म की व्याख्या हुई। तो एक ग्रंथ में ऐसा देखने को मिलता है कि वो धर्म जो जवाबत है उनके में पूर्व जन्म और परजन्म की बातें थोड़ी कही जाती हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि चीन की 5000 वर्ष पूर्व उसकी पूर्व की सभ्यता, उसके कैसे धर्म की व्यवस्था कैसी रही उसके बारे में ज़्यादा मैं नहीं जानता हूँ। जो पारसी से लेकर के और जो ईश्वर को मानने वाले धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो पहले जो सांख्य को जो ईश्वर को मानने वाला है, ईश्वर को न मानने वाला पहले कौन सा है, तो पूछ रहे हैं कि सबसे पहले जो ईश्वर को न मानने वाले जो सांख्यवादी हैं वो पहले उत्पन्न हुए हैं। तो उसके बाद बौद्ध जो ईश्वर है ऐसा मानने वाले सांख्यवाद पैदा हुए। अगर अच्छी तरह से उसकी सोच विचार नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गौड़ हैं, जो रहस्य हैं, जिनको हम नहीं जानते हैं, कहना तो चाहते हैं, जानना तो चाहते हैं, तो फिर ऐसा मान बैठते हैं। बहुत इतना बड़ा आसान भी हो जाता है, चलो कोई बात नहीं, हम लोग नहीं जानते ये सारी चीज़ें, भगवान या ईश्वर हैं वही जानते होंगे, हमारे बस की बात नहीं है, ऐसा सोच बैठते हैं, बड़ा आसान सोच लेते हैं। जो पूर्व तो भगवान बुद्ध की बातें, अगर बुद्ध की बातें की जाएँ तो जो बीते हुए बुद्ध या पहले बुद्ध हो चुके हैं, तो उनके बारे में हमें सोचना चाहिए, जानना चाहिए कि जिस प्रकार से कहा जा रहा है उस प्रकार से है कि नहीं है, सोचना चाहिए। शब्द जैसे शब्द सा कहा जा रहा वैसा है कि नहीं है। तो ये जैसा कि अलग अलग बातें कही जाती हैं कि नरक लोग इतनी दूरी पर, स्वर्ग लोग फलानी जगह है, तो उनके बारे में जानना चाहिए। तो तिब्बत में जब हम लोग थे तो ज़्यादातर तो जैसा है वैसा मान बैठते थे, लेकिन अब सोचना चाहिए। अब मेरा उधार दिया जाए, मैं लगभग 80 वर्ष के आसपास मेरी आयु हो गई है और बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ, तो भगवान बुद्ध के दर्शन को मानने वाले हैं, उनके अगर अनुयायी हैं, तो उसके बारे में सोचना चाहिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे जो केवल इतना ही चाहते हैं कि हमें देवता में प्राप्त पैदा हो जाए, तो फिर हमें उनको जो शब्दार्थ या है कि नहीं उनके बारे में ज्यादा जाने या ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो ईश्वर को मानते हैं तो उनके साथ में बातचीत करना बड़ा आसान है कि जो भी चीजें भगवान बुद्ध ने बना, जो भी है वो ईश्वर ने बनाया ऐसा जो मानते हैं, तो उनके साथ में बातचीत करना आसान होता है कि ये दुनिया कब शुरू हुई, कब अंत हुआ, तो वो सिर्फ यही कह देते हैं कि ये तो भगवान के हाथ में है। तो इन चीज़ों से इनसे फायदा तो है ही है, लोगों को फायदा होता, उनको भी उन जो जो ईश्वर हैं उनके में भी प्रेम प्रेम ज्ञान और मैत्री इत्यादि होती है। भगवान बुद्ध में भी प्रेम ज्ञान मैत्री इत्यादि की जो तीन शक्तियां हैं देखने को मिलती हैं। तो भगवान जो भी चाहे ईश्वर ने बनाया हो, अगर ईश्वर ने बनाया है तो ईश्वर ने बनाते समय भी बड़ी प्रेम और करुणा से बनाया, ऐसे नहीं बना दिया। अगर भगवान ने बनाया तो उनको एक पिता के समान मान करके, और जो हमारे जो शरीर है जो चाहे जो जीन है, तो जैसे कि पिताजी से बच्चों में आते हैं उसी प्रकार से भगवान से भगवान ने भी अगर हमें बनाया है तो जो प्रेम प्रेम मैत्री और करुणा है वो सारे के सारे चीज़ें हमारे अंदर भी उस प्रकार के बीज होने चाहिए। और भगवान बुद्ध को भगवान माफ करना, अगर अपने अपने ईश्वर को मान करके प्रेम करना का कर अभ्यास करते हैं तो लोगों के लिए फायदा है, खुद के लिए फायदा है, किसी के कोई बाधा नहीं, कोई परेशानी नहीं है, ना किसी के सिद्धांत को रोकना की जरूरत है, ना अपने सिद्धांत को सिद्ध करने की जरूरत है। तो ये तो बहुत सामान्य बात है, बहुत अच्छी बात है। तो उसमें भी जो 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 धर्म को मान रहे हैं उसमें भी बहुत सारे विभेद होते हैं। तो जो हिंदू का धर्म है तो ज़्यादातर मानते हैं कि ब्रह्मा ने बनाया है, ऐसा मानते हैं। और जो और पूर्व परजन्म पूर्व जन्म को भी मानते हैं, और कर्म फल के सिद्धांत को हेतु और प्रत्येक सिद्धांत को भी मानने वाले हैं। और भगवान बुद्ध का दर्शन ऐसा है जो ईश्वर को नहीं मानता है, कोई ऐसा सिद्धांत है जो भगवान बुद्ध ने खुद कहा है कि अत नाथो भव, आप अपने स्वयं के स्वामी हैं, चाहे हमारे सुख हो या चाहे दुख हो वो हमारे अपने कर्मों की वजह से उत्पन्न होते हैं। तो बहुत सारे लोग भारत में भी ऐसे कहते हैं कि आप लोग नीच जात के हो, आप लोग नीच जात को फलाने हो, आप तो कर्म फल के कर्म की वजह से उत्पन्न हुए, कुछ नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार की बातें कुछ लोग ऐसे हैं जो जो मुझसे मिले हैं। तो कुछ नए जो बौद्ध लोग हैं जो वो लोग कर्म फल की बातें सुनते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता, ऐसे नए बौद्ध लोग हैं वो मानते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि लोग जब जो अभ्यास जो उनको जो व्याख्या करते हैं कहते हैं कि आप कर्म की वजह से ऐसा ऐसे पैदा होते हैं। तो ऐसे लोगों को जो व्याख्या है जो कर्म फल की व्याख्या है उसको अच्छी तरह से करनी चाहिए। भगवान बुद्ध का दर्शन कर्म और फल के सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है। और जो 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 बौद्ध जो जो कर्ता को नहीं मानते ईश्वर को नहीं मानते हैं, जैसे कि सांख्यवाद जैसे कहते हैं कि जो नित्य है उसमें उसका कोई एक मार्ग सांख्यवाद मुझसे मिले वो हमसे मिले वो माध्यम दर्शन के बारे में काफ़ी विद्वान है, तो उनके साथ सारे काफ़ी बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा कि जो जो आत्मा उसका कोई शुरुआत नहीं होती है, और जब नष्ट होते समय और जब मृत्यु होता है तो उस समय भी आत्मा नष्ट नहीं होती है। लेकिन जो 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 जैन है उनके साथ साथ मेरी ज़्यादा विशेष बातचीत नहीं हो सकी, लेकिन बौद्ध धर्म के अनुसार भी मानते हैं कि ना तो आत्मा का अंत होता ना शुरू होता है। लेकिन कुछ इसमें ऐसे हैं बौद्ध धर्म के कि आत्मा कहते हैं कि जहाँ हमारा चित्त की चित्त नष्ट हो जाता है वहाँ आत्मा भी नष्ट हो जाती है, या चित्त संतति नष्ट हो जाती है, ऐसा भी मानने वाले हैं। तो जो शरीर जो हमारे पांच स्कंद हैं उसका अंत है कि नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता है, उसका स्पष्ट कहा जाता है कि उसका अंत है कि नहीं है। तो उससे जो तक जो इस जो 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 ईसाई है वो लोग भी कहते हैं कि आत्मा नित्य है, उसको आत्मा कहते हैं या सोल इत्यादि की व्याख्या करते हैं। और चाहे जब मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्ग में जाती है नरक में जाती है तो इन पांच स्कंदों से हटकर के एक आत्मा होती है, ऐसा मानते हैं क्रिश्चियन लोग, ऐसा मानते हैं। और बौद्ध धर्म सिर्फ बौद्ध धर्म ऐसा ही है जो कि कहता है कि पांच स्कंदों से हट करके, पांच स्कंदों से हट करके कोई आत्मा के स्वतंत्र रास्ता हो तो ऐसा कोई दर्शन नहीं है, ऐसा कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती है। अगर इन बातों को हम देखें, इनको अगर संबंध बनाकर देखें तो ये माध्यमिक दर्शन पर निर्भर करती है। तो इन बात ये बातें जो हैं इनमें कोई विरोधाभास नहीं होता है। तो इस प्रकार से अंतर बहुत सारे पैदा होते हैं जो कि कर्ता को मानने वाले हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं, ईश्वर को न मानने वाले हैं, ऐसे भी होते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार वो ईश्वर को भी नहीं मानते हैं और पांच स्कंदों से हटकर के भी आत्मा को नहीं मानते हैं। और आत्मा जो है उसको हमारे प्रज्ञा के अनुसार, जो हमारे चित्त है उसके अनुसार नाम मात्र दिया जाता है, ऐसा माना जाता है। ना तो उसकी कोई शुरुआत होती है, ना ही कोई अंत होता है। और बौद्ध धर्म के अनुसार परंपराएं जो पाली परंपरा, जैसे बर्मा, कंबोडिया, श्रीलंका, लाओस इत्यादि में पाली परंपरा है, और उसमें तीन पिटकों के अनुसार उनमें जो हमारे मार्ग हैं या क्रम, उनके अभ्यास करने का तरीका काफ़ी अच्छा है। और जहां तक शील की बात की जाए, विनय की बात अगर की जाए, तो विनय के बारे में अगर बात की जाए तो जो पाली परंपरा काफ़ी अच्छी है। बहुत सारी ऐसे ग्रंथ हैं जो विनय के जो ग्रंथ ऐसे हैं जो पाली ग्रंथों में हैं, बहुत सारे हो सकते हैं जो पाली में हों, जो कि जो तिब्बती में ना हों, तो ऐसी बात हुई है कि जो पाली में उनको पाली में हैं उनको तिब्बती में अनुवाद करना चाहिए, ऐसी बात हुई है। तो ये हमारी जो तीन ग्रंथ, तीन पिटक हैं वो एक समान हो जाए, ये तीनों चाहे थेरवाद के हों चाहे मायान के, एक एक जब एक जैसे हो जाए तो और अच्छी बात है। कुछ में कुछ विभेद हो सकता है लेकिन मुख्य रूप से एक जैसे होना चाहिए। तो उसके अतिरिक्त जो संस्कृत परंपरा है या फिर महायान परंपरा है, या सबसे पहले भारत से अगर दूसरे देश में गई तो सबसे पहले चीन में गई, तो ऐसा एक कहावत है कि सबसे पहले जहाँ तक तंत्र की बात है थाईलैंड में भी फैला था। तो उन्होंने बहुत पहले कहा है कि एक व्यक्ति ने मुझे थाईलैंड से जो वज्र है, तो वज्र से जो पंचमुखी वज्र हमको दिया कि थाईलैंड में ऐसा मिला है। तो इससे स्पष्ट होता है कि वहाँ पर तंत्र और माया धर्म की विस्तार हुआ था, ऐसे इस चीज़ों को देखने को मिलता है। तो ऐसा कहा जाता है कि श्रीलंका में भी महायान और तंत्रयान का विकास हुआ था, ऐसा देखने को मिलता है। तो इसलिए हम लोगों को श्रीलंका, बर्मा इत्यादि लोगों को ये हीन यानी ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए, उनको कभी नीचा नहीं देखना चाहिए, बुरा नहीं देखना चाहिए। और संस्कृत परंपरा खासकर नालंदा परंपरा से शुरुआत हुई और इसमें नागार्जुन इत्यादि के द्वारा वो सबसे पहले चीन इत्यादि में फैले, और वहाँ पर महायान परंपरा काफ़ी विशाल रूप से विकसित हुई। फिर चीन से लेकर के चाइना से चीन से कोरिया, जापान इत्यादि में फैला, और इसके अतिरिक्त जो गुरु तंत्र इत्यादि की व्याख्या अलग अलग जैसों में फैली। और उसके अतिरिक्त अगर तिब्बत का उदाहरण देखा जाए तो 7वीं शताब्दी में ठीसेन सुंगचेंग गांपो के समय से, और उसमें खासकर जो धर्मराज ठीसेन देशन के समय से विकास हुआ और काफ़ी प्रमुख रूप से वहाँ बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो तिब्बत का बौद्ध धर्म है, ये बौद्ध धर्म ये नालंदा से गया हुआ बौद्ध धर्म है। सोचे गांपो के समय दुर्जे पांगो ऐसा कहा जाता है, लेकिन उसको इसमें सिद्ध नहीं किया जा सकता। लेकिन ठीसेन देशन के समय से से जो भिक्षु शांति रक्षित और उसके जो मित्र लोग बहुत सारे लोग ऐसे थे जो के जो जो गल जो तिब्बत में बुराई थी उनको नष्ट कर सकते थे और उन्होंने ठीसों दिन से का उनका आयोजन करने वाले थे और तिब्बत में बौद्ध धर्म का खास कर विस्तार होने का जो समय है वो सातवीं शताब्दी से माना जाता है जैसा कि हम लोग जानते हैं शांति रक्षित है और जो माध्यमिक रंगी उपा है और जो वज्र और रंगी उपा इत्यादि हैं तो उनको शुरुआत करने वाले या उसके जो अग्रदूत थे उनमें शांति रक्षित के रूप में देखा जाता है और उसके अतिरिक्त अगर तिब्बत अगर नालंदा किसी या इसने किया हो ऐसा संभव नहीं है तो खासकर जो माध्यमिक दर्शन के मानने वाले तो जो विज्ञानवादी हैं उनका अलग सिद्धांत है जो खासकर उनमें देखा जाए तो जो वो प्रकांड विद्वान होते थे जो माध्यमिक अवतार है उसमें देखने को मिलता है तो इन ये चीज़ें जो है माध्यमिक अर्थात में देखने को मिलती हैं हम लोग उसको देख सकते हैं और उसके अतिरिक्त तो उनके शिष्य कमलशील उमर नवा इत्यादि माध्यमिक सार आदि ग्रंथों की रचना की तो अभी भी जो शास्त्र है उसमें दो ग्रंथ देखने को मिलते हैं अगर शांति रक्षित को देखें उसके अतिरिक्त कमलशील इत्यादि प्रमाण के बारे में बहुत काफी प्रमुख विद्वान रहे हैं तो ऐसा नहीं हो शांति रक्षित और शांति रक्षित इत्यादि से विज्ञानवादी हो ऐसा कहीं ना हो ऐसा कहीं लगता है क्योंकि माध्यमिक और प्रमाण के बारे में प्रमुख रूप से जो विद्वान थे वो शांति रक्षित के को माना जाता उनको श्रेय दे माना जाता है चाहे वो विनय की बातें हों चाहे उनका दर्शन का शिक्षा की बात हो शिक्षण की बात हो चाहे अनुवाद करने की बात हो तो उन्होंने ऐसा कहा कि आप तिब्बती लोगों को अपनी भाषा में तिब्बती भाषा में अनुवाद करने की आवश्यकता ऐसा उन्होंने आदेश दिया था तो फिर उसके बाद उसका अभ्यास हुआ तो कुछ इतिहासकार लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कि कुछ के शांति रक्षी जो थे वो उन्होंने भी तिब्बती भाषा को सीखा था तो जब तिब्बत में शांति रक्षी दी गए तो उस समय शायद 75 की आसपास उम्र थी उनकी ऐसा कहते हैं लेकिन उसका सिद्ध करने का अगर जब तक हमको नहीं मिलता तब तक नहीं कहा जा सकता है लेकिन फिर भी ऐसा कहने को आता कि नालंदा के आठवीं शताब्दी के प्रमुख विद्वान थे तो वहाँ के नालंदा के जो भिक्षु थे उनमें से सर्वश्रेष्ठ ये थे तो फिर उसके बाद तिब्बत में वहाँ पहुँचे अगर हम सामान्य रूप से सोचें और तिब्बत जैसे भारत जैसे गर्म देश में रहे और दाल चावल इत्यादि खाए और फिर उसके बाद जब तिब्बत में गए तो फिर तिब्बत में जाए गए तो वहाँ किस प्रकार का भोजन रहा हो पता नहीं जो भारत के एक प्रकार ने विद्वान और वहाँ पर तिब्बत पहुँचे होंगे तो सत्तू इत्यादि खाए हों तो ऐसा भी देखने को मिल सकता है अगर सत्तू इत्यादि खा कर के भी रहे हो बहुत धर्म फैलाए तो ये बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है उनके लिए बहुत ही कृतज्ञता की बात है क्योंकि वहाँ पर उनका इन इन वातावरण से खान पीन से भी परिचित नहीं थे फिर भी वहाँ पर पहुँचे फिर जब उस समय जब गए तो भारत में घोड़ा गाड़ी और शायद बैलगाड़ी इत्यादि हुआ करते थे तो तिब्बत में तो नहीं होते थे फिर भी वहाँ पर वो पहुँचे उन्होंने कहा कि आपको तिब्बती भाषा में अनुवाद करने चाहिए तो जब ये देख सुनने को मिलता है कि उन्होंने तिब्बती भाषा सीखी तो बड़ा एक गर्व महसूस होता है, खुशी महसूस होती है। आठवीं शताब्दी से जब तिब्बत में बौद्ध धर्म वहाँ पर विस्तार शुरू हुआ, जब वहाँ पर सूत्रयान और तंत्रयान दोनों प्रकार के अच्छी तरह से स्थापना हुई, तो इस प्रकार के जो पूर्ण रूप से धर्म है वो ना तो तिब्बती में देखने के, ना तो आपको पाली में देखने की आवश्यकता है, ना संस्कृत में देखने की आवश्यकता है, आपको अपने भाषा में उसको अनुवाद करने की आवश्यकता है। ये उदाहरण के रूप में अगर मैं अपना उदाहरण दूं तो मैं भारत के या उसके अतिरिक्त बहुत सारे विद्वान लोगों से मिला जो बौद्ध धर्म की अभ्यास करने वाले लोगों से मिला, बहुत सारे विद्वान लोगों से मिला, बुद्ध विहार के मठाधीश लोगों से मिला, तो इस प्रकार से बहुत सारे लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला। तो फिर भी सब जगह गया, लेकिन तिब्बती बौद्ध धर्म के जैसा इस प्रकार के विशाल रूप से अन्य जगह देखने को मिले ऐसा मुझे कहीं भी नहीं मिला। और जहाँ तक बौद्ध धर्म की बात कही जाए, तिब्बती बौद्ध धर्म की बात की जाए, तो प्रमाण ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन लगभग 15-20 वर्षों तक उसका अध्ययन करते हैं, पठन पाठन करते हैं। तो ये इस प्रकार के अध्ययन करने की जो गहरी व्यवस्था है वो तिब्बती के अलावा दूसरे को देखने को नहीं मिलती है। जैसे प्रज्ञा पारमिता इत्यादि ग्रंथों अगर चाहो कि तुरंत देख लिया जाए, एक साल में कुछ महीनों में देखा जाए तो मुश्किल है। उसको क्रम से अगर देखा जाए तो उसके बहुत सारी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, क्रम होता है। तो इस प्रकार के क्रम से अगर अध्ययन किया जाए, कुरुकुलम जब पठाई पठन पाठन का है, तो तिब्बती ग्रंथों के अलावा देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए आज हमारी भाषा में, अपनी भाषा में विस्तार रूप से तो है ही, उसके अतिरिक्त गंभीर भी है। मेरे बहुत सारे कल्याण मित्र हैं, बहुत चीनी दोस्त लोगों के बारे में बात की, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। अब काफ़ी बहुत सारे लोग जो शाकाहारी लोग हैं, बिल्कुल शाकाहारी है, मीठ नहीं खाते हैं। कनाडा में मुलाकात हुई कुछ वियतनाम लोगों से, कहा कुछ हमको तो यम दुख जो दोपहर का खाना मैंने अलग से ना खा गए, साथ साथ खाना खाने के मेरी इच्छा, काफी अच्छा लगा, काफी अच्छा महसूस हुआ। '1965 में मैंने मीट खाना छोड़ दिया, लगभग 2 साल तक मैंने बिल्कुल मीट नहीं खाया, अंडा वगैरह कुछ भी नहीं खाया, 25 महीने तक लगभग कुछ भी नहीं खाया। तो मेरे कुछ मेरे भारतीय मित्र हैं और मैं तरका इत्यादि जो हैं उनको बहुत मैं खाया, और उसके बाद जो हमारा गाल ब्लैडर इत्यादि जो है पीलिया की बीमारी मुझे हो गई, और मेरी आँख नाखों सब पीले हो गए। तो उस समय मैंने कहा कि मैं पीला बुद्ध बन गया, ऐसा मजाक में लोगों का। तो मैं अभ्यास से वो ऐसा पीला बुद्ध नहीं बना, मैं ये बीमारी की वजह से पीला बुद्ध बन गया, ऐसा मैंने लोगों से मजाक के तौर पर कहा। तो पूर्ण रूप से वेजिटेबल मतलब शाकाहारी बनने से तो फायदा नहीं हुआ। तो उसके बाद विदेशी और देसी उन्होंने बहुत मुझसे कहा कि जो दूध इत्यादि के बने हुए पदार्थ हैं उनको बहुत ज़्यादा खाने की जरूरत नहीं है, जो पहले आपसे जो आदत है, अगर केवल शाकाहारी ही सिर्फ खाओगे तो उससे आपको फायदा नहीं होगा। लेकिन फिर मैं प्रयास करता हूँ कि कम से कम मीट खाने का प्रयास करता हूँ। और ज्यादा जो बौद्ध विहार है उनमें केवल शाकाहारी भोजन होता है, लेकिन आसपास में जो दुकान है उसमें तो मीट खूब मिलती है, तो उनको बहुत फायदा होता है ऐसा देखने को मिलता है। तो मैंने कहा जो भोजन है, उन्होंने कहा भोजन जो जो उन लोगों से मैंने कहा जो भोजन है तो भोजन तो मैं जो अभ्यास भोजन है मैं माया हीनयान के अनुसार करता हूं और जो अभ्यास है मैं माया के अनुसार करता हूं ऐसा उनसे मैंने कहा। तो जो भी मुझे वो दे देते हैं, जो भी भिक्षा पात्र में दे देते हैं, जो भी मुझे भोजन में मिल जाता है उसे मैं ग्रहण कर लेता हूं, तो उसको मैं अंतर करके या ये मैं नहीं खाऊंगा, फला नहीं खाऊंगा ऐसा मैं नहीं कहता हूं। चीन में महायान धर्मपरा महायान परंपरा फैली काफी अच्छा है वहाँ पर, और वहाँ पर बोलो शाकाहारी भोजन पर निर्भर करते हैं, जो भिक्षु लोग होते हैं वो शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। तो ग्रंथों में भी कहा जाता है, विनय में भी कहा जाता है कि किस प्रकार भोजन को नहीं करना चाहिए, मीट को नहीं खाना चाहिए। उसमें कहा गया है कि माध्यमिक सार में ऐसा कहा जाता है कि जा हो सके तो मांसाहारी नहीं करना चाहिए। तो चाइनीज लोग किस प्रकार से भोजन को ग्रहण करते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि शाकाहार का पालन करते हैं। जो थांसे चीन के तो धर्मगुप्त इत्यादि जो हुए हैं तो वो तो जोगचेन के ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। तो बाद में वो धर्मगुप्त इत्यादि बाद में तो वो माध्यमिक दर्शक हो गए थे, उससे पहले उसे पहले चित्र मात्र वाले विज्ञानवादी थे। तो धर्मगुप्त से लेकर के जो माध्यम जो नागार्जुन के जो ग्रंथ हैं मूल माध्यमिक इत्यादि से जो अनेका अनुवाद हुआ, तो चीन में ज्यादातर माध्यमिक दर्शन का न होकर के विज्ञानवादी परंपरा का अनुवाद गया हुआ। और उसके अतिरिक्त चार सिद्धांत हैं जो चार सिद्धांतों की बात की जाए वो चाइना में देखने को मिलता है, वहाँ पर उनका अनुवाद हुआ है। तो आजकल भी अगर देखा जाए, अगर चीन में अगर बौद्ध धर्म की बात देखा जाए तो काफी संख्या में करोड़ों की संख्या में बौद्ध धर्म के अनुयायी वहाँ पर हैं। और भारतीय विद्वान जो 17 विद्वान हुए उनको ग्रंथों को अच्छी तरह से पढ़ाई करके प्रमाण को साथ साथ प्रज्ञा जो प्रमाण शास्त्र उनको साथ साथ लेकर के पठन पाठन करने वालों की जहाँ बात की जाए तो साथ तिब्बतियों का अतिरिक्त दूसरा नहीं है। तो पूर्ण रूप से जहाँ सूत्र और शास्त्र और तर्क विज्ञान इत्यादि की बात की जाए, जो चारों सिद्धांतों के ग्रंथों की बात की जाए तो साथ तिब्बत के अर्थ नहीं है। अगर अच्छी तरह से आप व्याख्या करना चाहते हैं तो शायद ये तिब्बती भाषा के अलावा दूसरी भाषा में देखने को नहीं मिल सकता। तो इस हिसाब से देखा जाए तो तिब्बती भाषा काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सारे भिक्षु लोग उनको तो पता भिक्षु लोगों को तो पता ही है, उसके अतिरिक्त जो बहुत सारे जो उपासक उपासिकाएं हैं जो स्कूलों में आप लोग पढ़ाई करते हैं विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हैं, आप लोगों को तिब्बती भाषा में ध्यान देना चाहिए। खाने पीने की चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जहाँ तक भौतिक विकास के लिए अगर बात की जाए तो तिब्बती भाषा का उतना अनुदान नहीं रहा है, लेकिन धर्मों की बात जहाँ धर्म की बात की जाए तो उसके लिए तिब्बती धर्म का तिब्बती भाषा का अनुवाद भाषा का बहुत महत्वपूर्ण रहा। तो अगर भारतीय वो तिब्बती अनुसार देखा जाए, तिब्बती होने के नाते तो हम लोगों का अधिकार, आप लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि उसका उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए। तो बहुत सारे बौद्ध धर्म के में भी ऐसा देखने का आता है कि नागार्जुन के समय से ही कि जो महायान है वो बौद्ध धर्म के ग्रंथ नहीं, ऐसा कहा जाता है। तो भाव विवेक ने भी सिद्ध किया है नाग, और संत देव ने भी बुद्धचर्यावतार में कहा है कि ये बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध के द्वारा उपदेशित किए गए हैं, भगवान बुद्ध के वचन हैं। तो इस प्रकार की बातें बहुत सारे ग्रंथों में देखने को मिलती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि महायान बौद्ध वचन नहीं है। तो इसके अतिरिक्त जहाँ तंत्र की बात किया जाए तो तंत्र को तो बिल्कुल नकार देते हैं कि ये भगवान बुद्ध के वचन नहीं है, ये तो हिंदुओं से ली गई व्यवस्था है। तो तिब्बत की बात की जाए, तिब्बत में तो हम लोग सब मानते थे कि इस प्रकार की सही बात है कि भगवान बुद्ध के वचन है, लेकिन जब वहाँ से बाहर आ गए तो दुनिया के लोगों से मिलते हैं, तो लोगों से मिलने के बाद ये बातें सिद्ध होती हैं कि लोग कैसे क्या क्या इसके बारे में राय रखते हैं कि भगवान बुद्ध के वचन जो है बौद्ध वचन नहीं है, ऐसा मानने वाले लोग हैं। अगर तंत्र का अभ्यास करें तो महायान तंत्र का अभ्यास करना चाहिए जो कि बौद्ध धर्म का अभ्यास नहीं है, इस प्रकार के लोग मानते हैं। तो भाव विवेक इत्यादि के ग्रंथ है, उनमें भी तर्क के द्वारा सिद्ध करने कहे हैं। तो अगर ऐसा कहते हैं अगर ऐसा तर्क है कि विद्वान ने कहा है, भाव विवेक ने कहा है या फिर नागार्जुन ने कहा है, ऐसा अगर तर्क दें तो ये कोई तर्क सही नहीं होता। तो उसको सिद्ध करने के लिए हमारे जो मार्ग क्रम या फिर फल किस प्रकार से है, पाली परंपरा में किस प्रकार से उनको जानना चाहिए, तो उनको इनके मार्ग क्या है, रास्ते क्या है, उनको बारे में जानना चाहिए। जहाँ तक जो हमारे बोधंगे हैं उनके बारे में कैसे कैसे हैं उनके बारे में जानना चाहिए। तो इनको जानने सबसे इन सिद्ध करने का उद्देश्य है कि हमारा जो निरोध सत्य उसको सिद्ध करने की आवश्यकता है। तो अगर कोई कहता है कि जो महायान ग्रंथ है वो महायान ग्रंथ है, अब वो बौद्ध वचन नहीं है, अगर ऐसे कोई मानता है तो फिर देखना चाहिए कि किस प्रकार से नकारता है, नकारने का वजह क्या है, इसको नकारने से तो इसको जैसे प्रमाण वर्तक कड़का इत्यादि ग्रंथों में सिद्ध किया जाए तो उनको अच्छी तरह से समझना चाहिए और कि चार सत्य के सिद्धांत हैं वो किस प्रकार से हैं और परमार्थ सत्य या परम ये समृद्ध सत्य के जो सूक्ष्म सिद्धांत वो किस प्रकार के हैं उनके बारे में जानना चाहिए। शून्यता का सिद्धांत, शून्यता क्या है उसके बारे में जानना। तो अगर इनको हम जानते हैं, इनको सिद्ध करते हैं तो अपने ज्ञान के द्वारा प्रज्ञा के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है और इसके अतिरिक्त सिद्ध नहीं किया जा सकता है। शून्यता और क्लेश आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं कि नहीं, इनको अगर नहीं जानते हैं, अगर नहीं जानोगे तो उनको सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो शून्यता का सिद्धांत हमारे जो क्लेश है उनको वास्तविक प्रत्यक्ष रूप से विरोधी है कि नहीं, इनके बारे में जानना चाहिए। अगर हमारे अंदर आसक्ति पैदा होती है तो उससे फर्द गंदे को अभ्यास करना चाहिए। जब क्रोध उत्पन्न हो तो उसमें प्रेम का अभ्यास करना चाहिए। तो इनसे फायदा हो रहा है कि नहीं, इनको जानना चाहिए। और ये सारे के सारे क्लेश हैं वो हमारी आत्मग्राह की वजह से उत्पन्न होते हैं, इनकी जानना चाहिए। तो थोड़ा सोचिए इसके बारे में, थोड़ा विचार करिए, अभ्यास के द्वारा विचार करिए। अगर शून्यता का सिद्धांत नहीं है तो हमारे जो आत्मग्राह का सिद्धांत है, आत्मग्राह जिसमें हम ग्राही बहुत ज्यादा आसक्ति उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। अगर अपने क्लेश को नष्ट करना चाहते हैं तो हमारी जो शून्यता इत्यादि को जानना चाहिए, तो मायान ग्रंथों की संगीत और थेरवाद परंपरा की संगीत उनके बारे में जानना चाहिए। अगर हम लोग मजाक के तौर पर करें, कोई अगर मजाक के तौर पर अगर कहूँ तो थेरवाद के लोग अगर कुछ कहे कि मायान ग्रंथ बौद्ध धर्म के ग्रंथ नहीं है, उनके वचन नहीं है, तो उस समय अगर कहेंगे कि अरे कैसी बात करते हो, ऐसे करने से नहीं होगा, या फिर उसके अतिरिक्त करो, प्लीज ऐसा मत करिए, कृपया करें ऐसा मत करिए, आप उनसे विनती करें तब भी कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए आप लोगों को अपने बुद्धि से सिद्ध करना चाहिए। तो यहाँ पर तिब्बत से आए हुए लोग हैं, तो आप लोगों को भी समझना चाहिए कि सारे के सारे धर्म हैं, उनको सम्मान करना चाहिए। मेरे बहुत सारे ऐसे धर्म मित्र हैं जो धर्म को नहीं मानते हैं और या फिर करते ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, उनका मैं सम्मान करता हूँ, मेरे दोस्त हैं, लेकिन सिद्धांत के अनुसार उन्हें विभेद हो सकते हैं। मेरा एक भारतीय मित्र हैं, वे काफ़ी अच्छे ईश्वर को मानने वाले हैं, मेरा मित्र है, आप लोग में कुछ लोग जानते हैं, सुना होगा जो मैं कह रहा हूँ। उनसे मैंने बहुत अच्छे दिल से बातचीत की है। इस दुनिया के सारे लोगों को बनाया है बस ईश्वर ने बनाया है, और इसमें बहुत सारे बुरे लोग भी हैं, और जो बुरे लोग हैं उनको भगवान ने क्यों बनाया, बुरे लोगों को भगवान ने क्यों बनाया। तो मैंने उनसे कहा, मैंने अगर देखा जाए तो आधा तो मैंने मजाक के तौर पर कहा और आधी बात तो सत्य के रूप में कहा। तो फिर मैंने उनसे मजाक में कहा कि अगर ईश्वर ने अगर इन लोगों को बनाया है तो शायद इसलिए बनाया है, नरक इसलिए बनाया है कि बुरे लोग नरक में जाएं, अच्छे लोग स्वर्ग में जाएं। अगर बुरे लोग न होते शायद स्वर्ग न बनाया जाता, नरक न बनाया जाता। तो भगवान अगर हैं तो उनमें केवल प्रेम और करुणा की बात है। फिर भी इस दुनिया में बहुत सारे दुख हैं, समस्याएं हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। लमरिम चेम्पो में शुरुआत में कुछ पन्ने हैं, उसमें पृष्ठ है, उसमें कुछ बातें कही गई, तो उसमें किस प्रकार से जो हमारे मार्ग जो क्रम जो आधार है और क्रम है उसके किस प्रकार से अभ्यास करने के तरीके हैं, उसमें अबुद्धों के द्वारा तर्क किस प्रकार दिया गया, उनको सिद्धांत कैसे रोका गया है, उसमें सिद्ध किया जाता है। उसमें चतुशतक के भी वहाँ पर कोट किया गया है, उनको आपको पढ़ना चाहिए। तो भगवान बुद्ध के अगर परिचय की बात की जाए तो भगवान बुद्ध का परिचय लगभग इस प्रकार से है। तो भगवान बुद्ध का धर्म है, जहाँ तक बुद्धत्व प्राप्त करने की बात है, तो केवल उसे श्रद्धा भर मात्र नहीं है। जैसा कि भगवान बुद्ध ने जब धर्म उपदेश दिया तो चार आर्य सत्य का उपदेश दिया था, तो भगवान बुद्ध जब नागार्जुन ने उनको जब स्तुति किया तो उसमें कहा उन्होंने कैसे कहा कि सर्वश्रेष्ठ का नाम दिया, तो उसमें उन्हें शब्द का यूज किया सर्वश्रेष्ठ। तो सर्वश्रेष्ठ का मतलब है कि कोई दूसरा नहीं है जो उनके ज्यादा उपदेश दे सके। तो दूसरे जहाँ तक गुरु की बात की जाए तो दूसरे धर्मों में मिलता है, हिंदुओं में मिलता है, गुरु जी कहते हैं या फिर उनके अपने अपने तो सभी लोग जहाँ तक मनुष्य शरीर है उसको महत्वपूर्ण मानते हैं, चाहे कोई दूसरे ग्रंथ का ग्रंथ दूसरे सिद्धांत का हो या ना हो, सभी लोग इस मनुष्य युद्ध को मानते हैं। जहाँ तक चार आर्य सत्यों की बात है, ये सार्वभौमिक है, बौद्ध धर्म के सभी जो सिद्धांत हैं, सभी ज्ञान उनमें व्याप्त होने वाले वचन हैं। प्रमाण वर्तिका कड़िका में कहा गया है कि जो छोड़ना है या फिर या ग्रहण करने वाले, उसमें कहा गया छोड़ने वाले और ग्रहण करने वाले। कहा कि मनुष्य के अतिरिक्त कोई ऐसा शरीर नहीं है जिसके द्वारा इन्हें ग्रहण किया जा सके, छोड़ा जा सके। केवल मनुष्य का ही शरीर है, उससे ही संभव हो सकता है। तो इसी प्रकार से जो नष्ट करने की चीज़ है या छोड़ने की चीज़ है, वो दुख होता है। और अगर उसको छोड़ना चाहते हैं, उसके लिए हमें निरोध मार्ग का अभ्यास करना चाहिए। और निरोध मार्ग का अभ्यास करने से हम बुद्ध अर्हत पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो अर्हत पद को प्राप्त करने के लिए भगवान बुद्ध के जो ग्रंथ हैं, उनको बुद्धि के द्वारा नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि वो हमारे बुद्धि पर नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और अपनी बुद्धि के अनुसार प्रमाणिक हैं। वो अप्रमाणिक हैं ऐसा नहीं, वो प्रमाणिक ग्रंथ हैं, प्रमाणिक शब्द हैं। तो इस पर हिसाब से जांच पड़ताल के अनुसार ऐसे चले जाते हैं। और कुछ ग्रंथ ऐसे भी हैं जो कि भगवान बुद्ध के वचनों के अनुसार माने जाते हैं। तो चार आर्य सत्य हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और जहाँ तक जय रिम्पोछे के लम्बे छम्बो, उसमें कहा है कि कदम पर इत्यादि के पूर्व के जो विद्वान है उनके बारे में वहाँ व्याख्या की जाती है कि सिद्धांतवादी माध्यमिक और विज्ञानवादी के बारे में व्याख्या की जाती है। और उसमें मध्यम पुरुष के बारे में जब बात करते हैं, और ये तो ये चार यार सभी यानों को साथ में रखकर के प्रवचन दिए गए हैं। तो भगवान बुद्ध के दर्शन किस प्रकार से उस प्रकार से मानना चाहिए, उनको आधार मान करके अभ्यास करना चाहिए। तो इस प्रकार से उनके सुवासित वचन देखने को मिलते हैं, अच्छे वचन देखना चाहिए। तो भगवान बुद्ध के अगर दर्शन की बात की जाए तो चार यार सत्य से शुरुआत होनी चाहिए। और चार यार से जाने के लिए हमें जो निरोध और जो मार्ग सत्य है उनके अंतर करते हुए मध्य माध्यमिक कड़िका में देखने को मिलता है कि नागार्जुन ने किस प्रकार से उनका विभेद किया। उन्होंने कहा कि दो 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 सत्यों को देख करके निर्बल होकर के चार आर्य सत्यों को समझा जा सकता है। तो उसमें व्याख्या की गई है। तो इस प्रकार की जो तरीका है वो काफी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से हमें माध्यमिक दर्शन में किस प्रकार से व्याख्या की गई है उनको बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि दो सत्यों को जानकर के ही चार आर्य सत्यों को समझा जा सकता है। दो आर्य सत्यों को चार आर्य सत्यों का ज्ञान सीखना चाहिए। चार आर्य सत्यों को जानकर सरल गमन है उनको जानना चाहिए। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म का परिचय देना चाहिए। जैसे लमरे सुंगोबा और लमरिम्बा और कदम्बा मेंगाबा, तीन प्रकार के व्यवस्था हुई है, तीन प्रकार के क्रम हैं। आज करके बहुत धर्म को मानने वाले या न मानने वाले हों, बहुत सारे लोग होते हैं। तो इस प्रकार के लोग हैं तो कदम्बा सुंगोबा के अनुसार करना चाहिए। लेकिन ये सुंगोबा का ये सिद्धांत ऐसा नहीं कहा जा सकते हैं। तो दो प्रकार के हेतु इत्यादि होते हैं उनको, जो जैसे कि जातक इत्यादि को बुद्धि के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता है। जातक में कहे गए चीज उनको बुद्धि के द्वारा अगर सिद्ध किया जाए, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। और उनमें खासकर दो प्रकार के जो ग्रंथ हैं हमारे शिक्षा समुच्चय बोधचर्या अवतार, ये काफी विशाल रूप से हैं कहे गए हैं उस विस्तार रूप से कहे गए हैं काफी रूप से विस्तार रूप से व्याख्या की गई है। तो तो मैं इसके अतिरिक्त दूसरी 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 ग्रंथों को देखता हूँ तो शायद तो व्याख्या इतनी स्पष्ट रूप से देखने को नहीं मिलती है। तो मुझे लगता है कि जो 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 दमगा इत्यादि जो उपदेश हैं उस प्रकार से उनका क्रम रहा होगा। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध के वचन है उनका परिचय था। तो अभी सामा लमरिम यहाँ से शुरू करेंगे। इनके अनुवादक जो जो रचयिता थे सामा सामर गेंदुन तंजन ग्यासो, तो उन्होंने सामा रिम्पोचे से काफी 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 ग्रंथों सीखा। तो उनका सामर का मत उनका एक एक सार उनका एक जगह के नाम से जाना जाता। उनके सामा का यहाँ अर्थ यही है कि उनका निवास या जगह थे या जहाँ पर रहते थे वहाँ के नाम से दिया गया। वो नोबलिंगा केसंग फुट जो महल था उसमें रहते थे, जो सातवीं शताब्दी में उसके बनाया गया। तो मैं बचपन में वहाँ पर रहता था। उनके उनके कमरे में समर रिम्पोचे के चित्र है, फोटो वहाँ पर देखने को मिलता है। और उसके परिरिप्छे के कि वहाँ पर चित्र था। तो उनके और भी उसे के फोटो को मैंने देखा, जिनके शरीर जो है काफी मोटा था। वो तो उन्होंने काफी उनसे ग्रंथों को सीखा था, बौद्ध धर्म को सीखा था। तो इस प्रकार के ये लमरे पढ़ाने वाले लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं, कम पढ़ाया जाता है। तो फिर मेरा तो मैंने अमदो गेशे से इसको सीखा। तो अच्छे मार्ग के अब अच्छे मार्ग को पहुंचने के लिए या फिर इसमें लमरिम का कोई हिंदी अनुवाद नहीं है, तो हिंदी श्रोतागर्ष में कहना चाहता हूँ कि जो परम पावन जी पढ़ते जा रहे हैं उसी प्रकार से हिंदी में पढ़ने के लिए कोई ग्रंथ अभी तक तैयार नहीं है। तो इसका प्रमुख रूप से सार क्या है उसके बारे में आप लोगों को मैं अनुवाद करता जाऊँगा, और परम पावन जी इसके दौरान व्याख्या करेंगे तो व्याख्या के क्या अर्थ वो देता जाऊँगा। तो पूर्व में तीन समय के जो भी ज्ञाता लोग हुए हैं, तीन समय को जानने वाले, त्रिकाल को जानने वाले आदि विद्वान लोग या फिर बुद्ध, उनको तो बौद्ध कोई भी धर्म सीखना से पहले हमें अपना मन अच्छा बनाना चाहिए। चाहे धर्म सीखने वाला हो या सिखाने वाला, दोनों का मन चित्त अच्छा होना चाहिए, मन साध शुद्ध होना चाहिए। केवल नाम प्राप्त करने के लिए या फिर प्रसिद्ध होने के लिए प्रवचन नहीं देना चाहिए। ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि बड़े तो कभी कभी जब मैं की भावना बहुत होती है, अगर बड़े से सीखते हैं तो कहते हैं मैंने ये मेरे गुरु प्रवचन मैंने गुरु से सीखा, और फिर छोटे से सीखा तो ये मेरा गेट शिष्य है, ऐसी बात है करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं मानना चाहिए। कभी आप लोग ऐसा संभावना है कि आप सोचेंगे मैं दलाई लामा से प्रवचन सीख रहा हूँ और मैं बड़े गुरु से सीखा हूँ, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। अपने मन को बस में करना चाहिए। भगवान बुद्ध हमारे मन को शुद्ध करेंगे ऐसी बात नहीं है, खुद करेंगे। अगर हम अपने मन को शुद्ध रखेंगे, संरक्षित करेंगे तो सुख की प्राप्ति होगी। अगर मन को हम शुद्ध नहीं रखेंगे तो दुख की प्राप्ति होगी, ऐसा सोचना चाहिए।
तो
तो हमें जो हमारे तीन तीन यान तीन पिटक हैं उनके सार को समझते हुए अभ्यास करना चाहिए, उसको संचय में बना करके उसका अभ्यास करना चाहिए। तो ये लमरिम की बात है, तो कदम मंगावा के शायद परंपरा है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं जो बड़े बूढ़ों में बुजुर्ग लोगों में डर पैदा करने वाला धर्म है, अगर आप भगवान बुद्ध को नहीं मानोगे तो नरक में जाओगे, मानोगे तो स्वर्ग में जाओगे, ऐसी बातें करने लोग हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते हैं, कुछ लोग ऐसे नहीं जानते होंगे। तो खम की एक कहानी है कि खम में एक कोई खेम्बो थे, तो वहाँ पर एक उन खेम्बो से मिलने एक व्यक्ति आए, तो खेम्बो वहाँ पर नहीं थे। तो उनसे जो अटेंडेंट थे उनसे पूछा कि मैं खेम्बो से मिलने आया हूँ, तो उन्होंने कहा कि आज खेम्बो नहीं है। तो उन्होंने कहा आज खेम्बो कहाँ गए, तो उन्होंने उत्तर दिया अटेंडेंट से, उन्होंने कहा कि जो खेम्बो हैं वो बुजुर्ग लोगों को में डर पैदा भय पैदा करने के लिए गए हैं। तो इस प्रकार की बात है, जैसे कि चार आर्य सत्य, तो चार आर्य सत्यों को किस प्रकार से हैं, तो चार आर्य सत्यों से जाने की जो हमारा बुद्धत्व प्राप्त करने की बात, अर्थ प्राप्त करने की बात है, उसको प्राप्त किया जा सकता है। इन बातों को जानना चाहिए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं, जैसे बुद्ध चरितार्थ में कहा जाता है कि दुख की प्राप्ति नहीं, सुख की प्राप्ति करने चाहिए। जैसा कि अपने जो दुख हैं उनको नष्ट करना चाहिए, और जो दुख को एक दुश्मन की तरह समझना चाहिए और उनको नष्ट करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और जब तक उनको हम दुख को पहचानेंगे नहीं, दुख को नष्ट नहीं करेंगे, तब तक हम सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार की सोच को उत्पन्न करना चाहिए। इस प्रकार के उदाहरण बोधचर्य अवतार में देखने को मिलते हैं। हम लोग दुख की प्राप्ति नहीं करना चाहते हैं। जहाँ दुख के कारण की बात की जाए तो हमारे सारे क्रोध, भय, घृणा, द्वेष इत्यादि चीजें होती हैं, इसकी वजह से हमें दुख की प्राप्ति होती है। तो इनको नष्ट करने के लिए, क्लेश, अपने क्लेशों को नष्ट करने के लिए धर्म को सीखना चाहिए, ऐसा मानना चाहिए या ऐसा अभ्यास करना चाहिए। अगर सरल गमन नहीं होगा तो आप बौद्ध नहीं कहला सकते। अगर आपके अंदर बोध सत्व के संबर नहीं होते हैं तो आप मायानी नहीं कहला सकते हैं। तो मैं जब भी मैं प्रवचन देता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि बुद्ध बनने के लिए आपको सरल गमन को जानना चाहिए, सरल गमन अच्छे से पालन करना चाहिए, चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो गुरु हो, इन शरण गमन से परिपूर्ण होना चाहिए। जब यहाँ शब्द एक आता है कि जब तक मुझे बोध की प्राप्ति न हो तब तक मैं सड़ जाता हूँ, ऐसा। और जो भी मेरे द्वारा दिए गए पुण्य हैं, तो पुण्य जो भी मेरे द्वारा दिए गए पुण्य या किए गए पुण्य है, तो वहाँ पुण्य की बात है, तो संभार तो ज्ञान के पुण्य और फिर और जो पुण्य संभार है, दोनों प्रकार के संभार को करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तो इसमें मैं का शब्द आता है, तो मेरे द्वारा या मेरे द्वारा, तो जब मैं या मेरे शब्द आता है तो उस समय सोचना चाहिए जो मैं या मेरा नाम का कहाँ पर है। सर से लेकर के पैर के तलबे तक अगर ढूंढे तब भी देखने को नहीं मिलता। तो सोते समय सोचना चाहिए, जागते समय सोचना चाहिए, बैठते समय सोचना चाहिए कि जो मैं है वो कहाँ है। और जिस प्रकार के हम अपने चित्त में मैं को सोचते हैं, उस प्रकार का मैं है कि नहीं, उसके बारे में सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तो कुछ समय एकदम तुरंत आपको अंदर एकदम विचार उत्पन्न हो जाएगा, ओ केवल नाम मात्र, केवल केवल हम नाम मात्र के रूप में मैं है, ना कि कोई अस्तित्व, वो स्वतंत्र से कोई अस्तित्व नहीं है। तो उस प्रकार से जब आप विचार करेंगे, सोच विचार करेंगे,
नंबर
तो जब बाहर बाहर के धर्मों के बारे में न सोचना चाहिए कि अपने अपने आप को जोड़ करके अपने मैं की जो कहने उसमें देखना चाहिए कि मैं कहाँ है, दूसरे सत्व के दूसरे पुरुष के मैं कहाँ, इसको बारे में जोड़ कर खुद के बारे में सोचना चाहिए। तो उस समय जब भी मैं शब्द आए उस समय शून्यता का सिद्धांत सोचना चाहिए। जैसे ये शब्द आता मेरे द्वारा दान दिए गए पुण्य से, जब भी शब्द आए उस समय हमारे दो प्रकार के जो संभार हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। तो साथ साथ आप लोग करेंगे बुद्ध धर्म गढ़ों में श्रेष्ठ संघ के इसी समय से जब तक मुझे बोध की प्राप्ति नहीं हो तब तक मैं शरण जाता हूँ। मेरे द्वारा दिए गए दान पुण्य से जब तक जगत के हित के लिए बुद्धत्व की प्राप्ति हो तो इस प्रकार की कामना या शरण गमन 3 बार करेंगे। तो इसमें कहा गया है कि जो जो व्याख्या करता है व्याख्या करते सूर्य चंद्र के समान है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। उनके उनके शिष्य जंपे यांग मंजुश्री इत्यादि जिन्होंने जिन्होंने के जिन्होंने जो गंभीर रूप से बुद्ध वचन दिए जिन्होंने बंद व्याख्या की है उसके तहत नागार्जुन असंग इत्यादि लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। तिब्बती विद्वान लोग जो भी हुए हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। सूत्र तंत्र इत्यादि को धारण करने वाले जानने वाले उनको मैं नमस्कार करता हूँ। और सारे के सारे जो महाराज रोज जो धर्म राजा इत्यादि हुए हैं जितने भी पुरुष हुए हैं उनको बार बार उन समय धर्म वचन सुन सकूं और या वो लोग बार बार इसमें पहुंचे हैं उनको प्रणाम करता हूं। और यहाँ पर जो 84,000 धर्म स्कंद जो भगवान बुद्ध ने दिए हैं उनका संक्षेप में उनको उनको उनके वचनों की व्याख्या करने के लिए जो जो लमरीम इत्यादि में व्याख्या की गई है तो जब परम पावन जी इस संक्षेप में व्याख्या करेंगे उस समय मैं इसका अनुवाद करूंगा क्योंकि हिंदी में ग्रंथ उपलब्ध न हो पाने की वजह से तो साथ साथ पढ़ने में मुश्किल होगी। जो हमें शरीर मिला है उस समय वो ये शरीर केवल अपने अभी के जीवन के लिए नाम प्राप्त करने के लिए खाने पीने के लिए नहीं है, उसको अच्छे धर्म के लिए लगाना चाहिए। तो जो अर्हत पद है वो किस प्रकार से है उनके बारे में, तो अर्हत है, अर्हत को आज जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। चार अर्थ सत्य के आधार पर जानना चाहिए कि अर्हत है जहाँ तक या फिर बुद्धत्व प्राप्ति है वो निश्चित रूप से है। हम लोग खुद अर्हत को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार के हमारे अंदर एक उत्साह पैदा होना चाहिए, खुशी उत्पन्न होना चाहिए, डर या भय पैदा उत्पन्न नहीं होना चाहिए कि अर्हत पद है जो कि परम सुख की प्राप्ति करा सकता है, ऐसी चीज है उसको प्राप्त किया जा सकता है, उसके बारे में खुशी महसूस करनी चाहिए। और सभी लोगों के हित के लिए मैं बुद्धत्व को प्राप्त करूंगा।
Rashin Chebe
तो बहुत सुख की प्राप्ति करने के लिए हमें सरल गमन इत्यादि का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा मान सकते हैं कि परम पावन जी के उपदेश से या यहाँ उपस्थित होने भर से ही धर्म को श्रवण करने से सुनने मात्र से ही कल्याण हो जाता है।
Rawan di tam je yang la dong yu le da lu dong je me da da ja ren ye tin ren ye tin che ge yang da yang du jian ba ma ge zhe wo zhe xia da yin de da ge zhe ren ye yu du san ye ge ko ma de zhe 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 wo lang ji zhe bi chi wo ma chao wo ye ge gong long xia ma zhen jian gang de
sab ji di din 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 xia sab ji di
na ga zhe zhe wo po dong ji dan na xia ba ye wo zhe ge ban zhe ba xia だ、ゲームサブジェクト、サブジェクト。だね。ね、だ、その、スティーズ、ラッツ、キャンプ、キャンプ、セット、や。あ、やべ、この、キャバ、ジェマネ、キャンプ、セット、ね。なんか、メンズが、タイトル、ドゥ、なんか、すぐ、ちょっと、キャンプ、クルー、シンジ、チュン、テンガル、ナザ、ダマ、ナザ、ペニー、ダイエット、ゲーム、ゲーム、ゲーム、ゲーム、ゲーム、ゲーム、ゲーム、ゲーム、ゲーム、ゲーム、ゲーム、ゲーム、ゲーム、ゲーム、ゲーム、ゲーム、ゲーム、ゲーム、ゲーム、ゲーム、ゲーム、ゲーム、ゲーム、ゲーム、ゲーム、ゲーム、ゲーム、ゲーム、ゲーム、ゲーム、ゲーム、ゲーム、ゲーム、ゲーム、 Nabo Chinese
तो आज 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 हमें ये जो हमें शरीर मिला है बहुत मुश्किल है और इस दुनिया के इतने प्रकार के दुख हैं उनको नष्ट करने के लिए उनसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयास करूँगा प्रयास करना चाहिए
Chinese तो
भगवान बुद्ध धम्म संघ तीनों में शरण में जाता हूँ, शरण जाना चाहिए। भगवान बुद्ध के धातु इत्यादि को नमन करता हूँ, उनको नमन करना चाहिए और संघ इत्यादि पर से धर्म इत्यादि सीखना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि दुख को जानना चाहिए, दुख समझने की चीज है। तो जानवर भी दुख को समझते हैं, और जो दुख परिवर्तन है वो तो अबौद्धों में भी देखा जाता। जैसा कि बौद्ध लोगों कहा गया कि बुद्ध को दुख को जाने, दुख को जानने का यहाँ कहने का तात्पर्य है कि हमारे जो संस्कार दुख है उसको जानना चाहिए। और दुख आने का हमारी मुख्य वजह हमारी आसक्ति की वजह से होती है, जैसा कि जे रिम्पोचे ने खुद कहा। जो जिस प्रकार से हमारी अज्ञानता है, अज्ञानता को जब तक हम नष्ट नहीं करेंगे, हमारे क्लेश को नष्ट नहीं करेंगे, तब तक हमारी हमारे जो दुख है उनको नष्ट नहीं किया कर सकते हैं। तो इसलिए अगर हम हमारे अज्ञानता के विरुद्ध कुछ काम नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तब तक नहीं जानेंगे। जैसे दुख का दुख, परिवर्तन दुख और संस्कार दुख है, उन तीनों दुखों में से हमारा जो संस्कार दुख है उसको नष्ट करना चाहिए। हम लोग ज्यादातर जो परिवर्तन दुख है उसको सुख समझ लेते हैं। जैसे कि तिब्बती लोग कोई विदेश में या अमेरिका इत्यादि में जब चले जाते हैं, जब ये पहले में जब स्विस में गया तो वहाँ पर तो उसने व्यक्ति ने कहा कि शायद सुख की बात है, तो शायद स्विट्जरलैंड में आने के बाद शायद मिलती है, ऐसा उन्होंने कहा। तो इस प्रकार का जो सुख की कामना है या सुख की बात है वो दुख होता है। उस समय हमें सुख रहने को, खाने को और मकान भोजन इत्यादि खूब मिलता है, उसे शरीर को तो सुख मिलता है। क्योंकि हम लोग जो शरीर जो मिला है वो भी किसी के अधीन होकर के मिला है, वो भी हम क्लेश इत्यादि के अधीन होने की वजह से शरीर की प्राप्ति हुई है। तो दोबारा से शरीर को दुख रूप शरीर न मिले सुख प्रयास करना चाहिए। आत्महत्या करने इत्यादि से कहो दुख के ये शरीर से मुक्ति मिल जाए वो संभव नहीं है। तो विज्ञान लोग भी कुछ ऐसा कहते हैं, काफी मिलता जुलता है। 10-15 वर्ष पुरानी बात है, वहाँ के एक वैज्ञानिक है, काफी बुजुर्ग वैज्ञानिक है, उस समय वो 83 वर्ष के थे। उन्होंने कहा कि जब हमें गुस्सा उत्पन्न होता है तो जिस पर हम गुस्सा करते हैं तो उस समय वो बुरा दिखाई देता है। तो जो बुरा दिखाई देता है वो हमारा वास्तव में 90% हमारे मन की वजह से बुरा दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में 10% ही वो चीज बुरी होती है, बुराई दिखाई देती है।
वो
तो इस प्रकार की जो बातें हैं नागार्जुन ने कहा कि जो हमारे कर्म या फिर अज्ञानता है सारे के सारे हमारे क्लेशों की वजह से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि हम लोग ज्यादातर जो भी बिंदु है विषय है उसको हम सत्य मान लेते हैं, सत्य कि ये जैसा है वैसा ही सत्य है उसके। तो जैसा कि उन्होंने कहा अमेरिका विज्ञान उनसे कहा तो उनसे मिला, फिर मैं दोबारा जब उनसे गया तो उनसे मुलाकात की और उनकी उम्र लगभग 90 के ऊपर पहुंच चुके थे। तो उनकी एक पुस्तक है, उन्होंने कहा कि टाइटल दिया है जो हमारा डर है, डर की जेल, हम लोग दुख भरे या डर भरे कैद में हैं, उसके कैदी हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति जो वैज्ञानिक थे तो उन्होंने परीक्षण के दौरान ये किताब लिखी, हालांकि वे बौद्ध नहीं हैं फिर भी ऐसी किताब उन्होंने लिखी। तो ये बात सत्य है, उसको अगर परीक्षण की जाए, जांच पड़ताल की जाए तो बौद्ध लोगों से काफी मिलती जुलती है। अगर अपने अज्ञानता को नष्ट करने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग अज्ञानता के एक प्रकार के युद्ध क्षेत्र में हैं, अज्ञानता के युद्ध क्षेत्र में उससे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये शब्द तो हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि ज्यादातर लोग विश्वास के हिसाब से चले जाते हैं, श्रद्धा की बस बहुत मानते हैं। तो जैसा कि प्रज्ञान जैसे प्रमाण वर्तक इत्यादि में कहा गया हो, उनके शब्दों को अच्छी तरह से सोचेंगे तो उनको वहाँ पर जोड़ करके देखना चाहिए कि ये शब्द जो कहे जा रहे हैं वो किस प्रकार से हैं। तो जो बुद्ध क्या है, धम्म क्या है और संघ क्या है, तो संघ इन तीनों के बारे में जानना चाहिए कि विशेषताएं क्या होती है। जो संघ कहा जाता है उसकी क्या विशेषताएं होती है, जो बुद्ध कहे उनकी विशेषता क्या है, इनके बारे में सोचना चाहिए। तो जो शरण गमन उसका अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बार बार उसका शरण गमन करना चाहिए। अच्छे जी जैसे कि लामा ईदम इत्यादि को शरण गमन करना चाहिए और जितने प्रकार के दुख हैं चाहे जानवर इत्यादि के भी दुख हैं उनसे भी नष्ट हो, उनसे मुक्ति मिले, ऐसी सोच करना चाहिए। मानना चाहिए कि जितने भी सत्व हैं वो सारे के सारे अनंत कल्पों के दुखों में पड़े हुए हैं। और अपने आप से ज्ञान का पारमिता, शील पारमिता, धन पारमिता इत्यादि जो पारमिता है उनका अभ्यास करूंगा। जब भी ऐसा मन उत्पन्न हो के भगवान बुद्ध के समान में उत्पन्न हो गया हूँ या हो रहा हूँ तो जब तंत्र इत्यादि के समय अभ्यास करते उस समय इस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है। तो उस समय जब ये भावना है तो उस भावना को समझने की कोशिश करना चाहिए, नहीं समझेंगे तो ये एक प्रकार की मिथ्या दृष्टि होती
है।
उसके चार ब्रह्म विहार के बारे में तो जितने भी हमारे अज्ञानताएं होती हैं या फिर हमारे क्लेश होते हैं वो अज्ञानता की वजह से उत्पन्न होते हैं। तो हमारे दुख एक तो स्थूल प्रकार के दुख होते हैं, गौर प्रकार के दुख होते हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए। और जो हमारे सूक्ष्म प्रकार के जो आसक्ति पैदा होती है उस समय क्या बुराई होती है तो उनको नष्ट करना चाहिए और उनसे मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। और क्लेश सूक्ष्म प्रकार के क्लेश और गौर प्रकार के क्लेशों को भी नष्ट करना चाहिए। तो ऐसा विचार होना चाहिए कि सारे के सारे दुख अपने सारे सारे सत्य दुखों से मुक्त हो जाए, सुख की प्राप्ति हो जाए। और जो चार ब्रह्म विहार उनको जानना चाहिए और हट करके एक जो सामान्य चित्त है उससे हट करके बोध चित्त उत्पन्न करना चाहिए। तो जितने प्रकार के भी सत्य हो चुके हैं हमारे माँ और बुजुर्गों के समान रहे हैं वो सभी के सारे सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं। कि जितने भी सत्य हमारे माँ के समान हैं उनके अर्थ के हित के लिए उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हो, भगवान बुद्ध की भूमि को प्राप्ति पहुँचे। जैसे कि भूख प्यास के डर जो दुख है उससे हमें तसल्ली मिले, शांति मिले। और बीमारी इत्यादि बीमारियां या फिर व्याधियां हैं उनसे उन मरीजों को दवा मिले, सुख मिले। और जो गरीब निर्धन हैं उनको भी धन मिले। और जो संक्षेप में मार्ग और विशाल मार्ग दो प्रकार के हैं तो ये तंत्र को साथ में जोड़ करके व्याख्या की जाती है कि जल्दी किस मार्ग से बुद्धत्व को प्राप्त किया जा सकता है और देर से किस मार्ग से प्राप्त किया जा सकता है। नम्रु लाग्छ la khare namdo laza namdo laza khare re
namdo
tem asam tem mendo gala namasa
ta nyamchi shechi nyungchi
Nyamchi तो अभी जो परम पावन जी प्रवचन दे रहे हैं दूसरे ग्रंथ से दे रहे हैं वो भी ग्रंथ हिंदी में उपलब्ध नहीं है
Tell them, Come, most of it to be easy to learn that they were in you, Chase Dave, D. Manon, D. Jang, D. Majan, La
तो बुद्धत्व के प्राप्ति खुद के द्वारा अगर नहीं की जाती है, दूसरे के द्वारा आपको बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है, तो बुद्धत्व की प्राप्ति करने के लिए खुद अभ्यास करना चाहिए, खुद प्रयास करना चाहिए।
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ 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 무시 마다와 대외
तो दुख आने का प्रमुख कारण हमारे जो अज्ञानता की वजह से होता है वो भी पुण्य न करने की वजह से होते हैं, पाप करने की वजह से उत्पन्न होते हैं और भव चक्र में बने रहने का वजह जो तो खासकर जो हमारे दो जो शून्यता है उसको न समझने की वजह से दुख में इस भव चक्र में रहते हैं।
तो
दुख और जहाँ तक पाप करने की बात होती है तो हमारे जो कुशल कर्मों को न वजह से होते हैं और हमारे कर्म फल उसमें मिथ्या दृष्टि की वजह से पाप उत्पन्न होते हैं। और कमलशील ने कहा है, उन्होंने ग्रंथों में भी कहा है और इससे सिद्ध होना भी चाहिए और रत्नावली में भी एक चित्र आता है और चतशतक में भी है भगवान बुद्ध का जो दर्शन है या धर्म है वो केवल भगवान बुद्ध का जो दर्शन है तीनों समय के लाभ होता है, अभी के लिए है, मध्य के लिए और अंत के लिए भी। और धर्म का मुख्य रूप से अगर सार के रूप में देखना चाहिए तो सुख की प्राप्ति होती है और अभी के लिए अगर उसका लाभ है तो अर्हत पद को प्राप्त करना, देवता इत्यादि होने में प्राप्त जन्म लेना और मुख्य और अंत की अगर बात की जाए तो अर्हत पद को प्राप्त करना है। तो प्रतिसमुत्पाद और इत्यादि के बारे में जानना चाहिए, प्रतिसमुत्पाद को समझे हमें शून्यता इत्यादि को नहीं समझा जा सकता। अगर दुख को नष्ट करें, अज्ञानता को नष्ट करें तो इससे ऐसे नष्ट करना चाहिए कि पुनः उत्पन्न न हो जाए, उसे जड़ से नष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। आगे वर्णन किया जा रहा है कि किस प्रकार से हम देव योनि में देवता योनि में जन्म ले सकते हैं और फिर और किस प्रकार से हम रथ पद को प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत सारे हेतु और प्रत्यय की वजह से ही अरहत पद को प्राप्त किया जा सकता है, बुद्धत्व को प्राप्त किया जा सकता है। बिना हेतु या बिना प्रत्यय के, बिना वजह से बुद्धत्व को प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो आज दोपहर के पहले तक यहाँ पर समापन होता है। अब पुनः यहाँ